आप बैठ जाएं। एक प्रकार से मैं प्रसन्नता से भरा हुआ था जब मैं अंदर आते हुए मैंने भाई मूर और उन सब लोगों को जिनको मैं वर्षों से जानता हूं मंच पर बैठे देखा। आज रात उनको यहां पर देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे धार्मिक विद्वानों के सामने खड़े होकर बोलने में मैं अपने आप को छोटा अनुभव करता हूँ। हो सकता है मैं जहाँ पर गलती करूँगा तो वे मुझे ठीक कर देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आज रात या कुछ विशेष लोग बहन रोज को देखकर हम प्रसन्न हैं। हम आ रहे थे, मैं भाई शोर और उनके सहायक के साथ दोपहर के भोजन पर था और मार्ग में चलते हुए भाई विलियम ने बताया कि बहन रोज काफी बीमार हैं। और तब हम उन्हें देखने को थोड़ी देर के लिए गए और घुटने टेके और उनको तेज बुखार था और काफी बीमार थी। कुछ शब्दों की प्रार्थना की और प्रभु हमसे बोला और कहा कि वो ठीक हो जाएंगी और कल रात वो वहाँ होंगी और आज रात वो यहाँ बैठी हैं। ये ठीक है। बहन रोज आप एक मिनट के लिए खड़ी हो जाएं ताकि सब, ये तो बिल्कुल बिस्तर से लगी हुई थी। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि शैतान ने तो मुझे हर तरह से तंग किया, यहाँ आते समय भी इससे मुझे कुछ हानि हुई थी, कुछ गले की बीमारी वगैरह थी, परंतु प्रभु उन्हें यहाँ इन हालातों में भी ले आया, इसलिए हम प्रसन्न हैं और प्रिय प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। अब हमारा बहुत ही सुंदर समय चल रहा है और कल रात हम रमादा में होंगे और भूलिएगा नहीं, कल रात यहाँ नहीं रमादा में होंगे। और अगली रात से बेदारी सभा आरंभ होगी और मेरे साथ एक रात और रहना है, आप समझते हैं। पिछली रात मैं अपने विषय क्रम से अलग निकल गया। मैंने वर्ष के आरंभ में अपने आप से प्रतिज्ञा की थी कि मैं संदेशों को 3 या 4-5 घंटों से कम करके 30-40 मिनट में पूरा करने का यत्न करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको कल रात बताया कि मेरी पत्नी ने रविवार के लिए कुछ टिप्पणियां की, मैंने बहुत ही अच्छा किया। इसके बाद मुझे कल रात भी वैसा ही करना था और समय में गड़बड़ हो गई और 30 मिनट के स्थान पर मैंने 55 मिनट पिछली रात लगाए। आज रात आते पर बिली ने कहा कि आप किस विषय पर बोलने जा रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ छोटे नोट लिख लिए हैं और कुछ पद हैं, मैं नहीं जानता, इसमें 4 या 5 भिन्न भिन्न संदेश हैं। मैंने कहा जब मैं वहां पहुंच जाता हूं और अनुभव करता हूं कि क्या चल रहा है। उसने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप सब बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा जी श्रीमान, आपके पास कितने प्रार्थना पत्र हैं। उसने कहा 200। मैंने कहा अच्छा होगा कि मैं आज रात ही आरंभ कर दूं। और उसने कहा अब ध्यान रखें कि आपके पास बोलने के लिए केवल 15 मिनट हैं। कहा कि बाकी आप पिछली रात में ले चुके हैं। 15 मिनट में हमें जल्दी जल्दी करना होगा, क्या मुझे नहीं करना होगा। भाई हमने आपसे प्रतिज्ञा की है कि हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके पास प्रार्थना पत्र हैं। जी हाँ, हम अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वचनबद्ध हैं। हम उन सबको इन लाइनों के द्वारा नहीं ला सकते और न ही मैं उन सबको व्यक्तिगत तौर पर बुला पाऊंगा इस सभा में से। तो भी जहाँ तक पवित्र आत्मा मुझे देगा मैं इतना खड़ा ना हो पाऊंगा, ये मेरे लिए कठिन होगा। पर हम सब लोग इन बातों से परिचित हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर अभी परमेश्वर है। वो चीज आपको चंगा नहीं करती, वो तो केवल आपके विश्वास को बनाती है ताकि हम जान सकें कि हम उसकी उपस्थिति में हैं। और आज रात हम सब बीमारों लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास प्रार्थना करवाने के लिए प्रार्थना पत्र है। और कल रात रमादा में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और प्रार्थना पत्र दे दें और उनके लिए प्रार्थना आरंभ करें, क्योंकि अभी मेरे पास कल रात भी है और मैं सोचता हूं कि एक रात मेरे पास बेदारी सभा के लिए है। हो सकता है कि नाश्ते वाला समय भी, ये निर्भर करता है कि तब कैसे चलता है। यहाँ पर कुछ वक्ता हैं जिनका परिचय अभी तक नहीं हुआ है। मैं नहीं सोचता कि भाई हैमबर्ग, ये क्या है, ये एमबर्गी कश एमबर्गी, मुझसे इसलिए गलती हो रही है। ये क्या जर्मनी नाम है, मुझे लगता है ये जर्मनी है, इसलिए ये मुझे कुछ अजीब सा लगा। जैसे कि हम कहते हैं उनके लिए जो ये बात है उसके लिए क्षमा करें। इस प्रकार से प्रभु में हमारा बहुत अच्छा समय बीत रहा है। आप सबको, यदि यहाँ कोई नया व्यक्ति आज रात हो तो आपको यहाँ पाकर हमें सच में प्रसन्नता है और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करेगा। मेरी ये प्रार्थना है कि आज रात जब हम यहाँ भवन छोड़ेंगे तो कोई भी बीमार ना होगा। हमारा प्रभु अपनी महान सामर्थ्य में नीचे उतर कर आएगा और जितने बीमार अपाहिज हैं सबको चंगा करेगा। यहाँ कुछ समय पहले मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर साक्षात्कार के लिए लेता था, कुछ गंभीर केसों को जिनसे हम बात नहीं कर पाते थे। जितने परमेश्वर उन्हें आशीषित करता था इतने लोग इतनी जल्दी जमा हो जाते हैं कि उनकी संख्या 300-400 की प्रतीक्षा वाली हो जाती है और लोगों की भावनाओं को ठेस लगती है क्योंकि वे प्रतीक्षा करते होते हैं। इन सभाओं के बीच में साक्षात्कार करने में बहुत समय लगता है, एक या दो वर्ष तक की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है कि कब उनका नंबर आए, और इसलिए हम केवल बैठकर प्रभु पर निर्भर करके प्रतीक्षा करते हैं जब तक वही हमें न बताए कि कौन सा केस है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज रात भी बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिनका विशेष साक्षात्कार होना है। है क्या यहाँ जिनका विशेष साक्षात्कार होना है? वो जरा अपना हाथ उठाएं। जी हाँ, यहाँ बैठे हैं और जानते हैं कि ये ठीक है। हम केवल प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं कि वो क्या कहता है और क्या समस्या है। और कुछ समय पहले हमने ये बंद कर दिया था। मैंने बिली से कहा था कि हम लोगों का निजी साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैंने अभी 2:25 पार कर लिए हैं और तीसरे की ओर बढ़ रहा हूँ। और जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हैं तो आप अपने को जैसा पहले आप हुआ करते थे वैसा नहीं रख पाते हैं। आपके कदम छोटे हो जाते हैं और ये सच है कि भाई मूर इस विषय में अभी कुछ नहीं जानते। मैं सोचता हूँ कि हम दोनों लगभग एक ही आयु के हैं। जब से आप, मैं और भाई ब्राउन यहाँ पर पहली बार भाई आउटलॉ और भाई ग्रासिया और भाई फुलर के साथ आए थे, तब से नदी का पानी काफी नीचे उतर गया है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी यदि वे लोग भी आज रात यहाँ होंगे तो भाई ग्रासिया, भाई फुलर, भाई आउटलॉ, क्या है यहाँ वो लोग? यदि आप यहाँ हैं तो अपने हाथ उठाइए। हाँ, वो रहे भाई फुलर। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं गलती ना करूँ तो भाई आउटलॉ यहाँ हैं। भाई ग्रासिया के लिए मुझे विश्वास है कि यदि वो फिनिक्स ना छोड़ गए हों, मैं सोचता हूँ ये ठीक बात है। वो फिनिक्स छोड़कर कैलिफोर्निया चले गए हैं। वो तो निश्चय ही बहुत अच्छे दिन थे और मैं अब तक उसी संदेश का विश्वास करता हूँ जिसका तब करता था। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मेरा अनुमान है कि ये लगभग जबकि बात है जब बेकी छोटी थी, लगभग 19 वर्ष की, और अब वो 19 वर्ष की लड़की बड़ी वृद्ध मोटी और बेडोल सी यहीं कहीं बैठी है। बेकी, तुम कहाँ हो? इस बात के लिए वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं स्मरण करता हूँ कि उसे मैं गोदी में लेता था, तब जो कार्य मेरे पास था वही आज रात कर रहा हूँ। भाई ग्रासिया की गिरजे पर मुझे एक रात याद है, वो छोटी सी थी और मैंने कहा आज रात हमारी अंतर्राष्ट्रीय सभा है। मैंने कहा कि मैं स्पेनिश लोगों को संबोधित करूंगा और मैंने कहा यहाँ मेरी पत्नी जर्मनी है। मैंने कहा मैं आयरिश व्यक्ति हूँ और मैंने कहा मेरी छोटी लड़की इंडियन है और वो बेकी थी। इस प्रकार जब मैं पीछे के दरवाजे पर गया तो वहाँ एक छोटी सी मैक्सिकन लड़की खड़ी थी। वो बोली, भाई ब्रैनम। मैंने कहा, हाँ प्रिय, तुम क्या चाहती हो? बोली, क्या आप सोचते हैं कि आपकी बच्ची इंडियन होने के नाते थोड़ी पीली है, उसके सुनहरे बाल हैं? और मैंने कहा अपने व्यवहार में वो इंडियन है। हम धन्यवादित हैं कि आज रात हम फिर यहाँ हैं। अब इससे पहले हम वचन पर आए, हम उसके पास चलें क्योंकि वो वचन है। जब वचन प्रकट होता है वो जो आप में है। जैसा कि पिछली रात हमने असंगत बीच पर सुना, क्या आपने प्रभु की आशीषों को सराहा? आप तक संदेश पहुंचाने को मैंने सराहा और हम देखते हैं कि बीज क्या होते हैं। अब क्या आज कोई विशेष निवेदन है, कुछ खास बातें? क्या हो सकता है आप में से कोई जो प्रार्थना की लाइन में आने वाले हैं, कहिए परमेश्वर दयावान होइए, जब मैं प्रार्थना के लिए लाइन में आता हूं तो होने दीजिए कि मेरा विश्वास उन स्थितियों तक बढ़ जाए। और हो सकता है कि किसी का कोई प्रिय हो जो कि बीमार या कुछ हो, क्या आप जरा अपना हाथ उठाएंगे ताकि परमेश्वर नीचे की ओर देखे और कहे? अब यदि वो, आप नहीं जानते कि जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, जब उनकी आवश्यकताओं को देखता हूँ। सेवक भाइयों, आप भी एक दृष्टि डालें, समझे? अब यदि ये मुझे ऐसा अनुभव होता है तो निश्चय हमारे पिता को कैसा लगता होगा। अब आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, आपके संपूर्ण पर्याप्त नाम के द्वारा हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो, परंतु केवल यही प्रभु यीशु नाम, और हम उसी के नाम में होकर आ रहे हैं। और स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने विश्वासी बच्चों की तरह ग्रहण करेंगे और प्रभु हमारे अविश्वास को क्षमा करें। आज रात हमारी सहायता करें कि हम अपनी सारी आवश्यकता, जिन चीजों की हमें है, परमेश्वर के पूरे वचन पर विश्वास करते हुए प्राप्त करें। आप जानते हैं कि इन उठे हुए हाथों के नीचे क्या है। बीमारियां, इनमें से कुछ लोगों को घर की परेशानियां हैं, कुछ की आर्थिक परेशानियां हैं, कुछ इनमें से थके हैं, हो सकता है प्रभु में पिछड़ गए हैं, कुछ पापी हैं, जो भी आवश्यकता हो मुकाबले में आप किसी भी शत्रु से बढ़कर हैं। इसलिए हम आज रात प्रार्थना करते हैं कि हम जान लेंगे कि हमारा प्रत्येक शत्रु हारा हुआ है, यहाँ तक कि मृत्यु भी, और उसमें हम जीते हुए से भी बढ़कर हैं, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें अपने लहू से धोया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर अविश्वास, हर शंका, हर निराशा, हर वो बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हम में से आज रात अलग हो जाएगी। पवित्र आत्मा सीधे हमारे हृदयों में आ सके, ऐसा हो कि वो हमसे गुप्त रूप में बात करे, होने दे कि वो हमसे अपनी सामर्थ में बात करे, होने दे कि वे जो आत्मिक रूप से मर गए हैं जीवित हो जाएं, बीमारों और दुखितों का स्वास्थ्य लौट आए, निर्बल घुटनों और थके हुए हाथों को जो लटक गए हैं उठा खड़ा करें, और होने दे कि आनंद में समय हो। प्रभु, आज रात ऐसा होने दे कि जब हम इस स्थान को छोड़कर रमादान इन जाएं और वहां पर एक ऐसी बड़ी बेदारी सभा का आरंभ करें जो कि कभी इस नगर में ना हुई हो। प्रभु, जब हम एक साथ जमा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपने कहा है यदि वो लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं एक साथ एकत्र होकर और प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात ऐसा ही हो। अब पिता, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं जिसे आपको छोड़ कोई और इसका अर्थ नहीं बता सकता, आप अपना अर्थ स्वयं बताते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ हम आज रात पढ़ते हैं आप ही उसका अर्थ बताएंगे। इसको हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब यदि आप में से कोई इन पदों पर निशान लगाना चाहता है जो ये सेवक पढ़ते हैं, और आज रात मैं चाहूंगा कि यदि आप मेरे साथ निकालें इफिसियों, और पिछले रविवार मैं इफिसियों पर बोल रहा था किस प्रकार से यहोशू की पुस्तक पुराने नियम की इफिसियों की पुस्तक है, और किस प्रकार से ये छुटकारे की पुस्तक थी, और छुटकारे के दो भाग होते हैं, कहीं से बाहर निकलना और प्रवेश करना। पहले आपको बाहर आना है। कुछ लोग अपने साथ संसार लेकर आना चाहते हैं, परंतु आपको संसार में से निकलकर मसीह में प्रवेश करना है। आपको अविश्वास से निकलकर विश्वास में प्रवेश करना है। आपके मार्ग में एक चीज भी नहीं हो सकती। एक सच्चा मूल विश्वास पाने के लिए आपको वो बात जो परमेश्वर के वचन से भिन्न है पीछे छोड़नी होगी, ताकि विश्वास में प्रवेश कर सकें। और ये यहोशू की पुराने नियम की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक, जहां मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और किसी को नहीं बचा सकता, केवल अनुग्रह बचाता है, और यह यहोशू यीशु शब्द के समान है, यहोवा बचाने वाला। और तब हम पाते हैं कि हम दूसरे इफिसियों के पास आ गए हैं, अब दूसरे इफिसुस में हैं, जहाँ पर हमारे बुद्धि वाले संगठनों और इस प्रकार के सारे पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम अब यर्दन पार आ गए हैं, ताकि हमें फिर से इफिसियों मिल सके। हमारा निकास होना चाहिए कि हम बाहर निकलें और रैप्चर में चले जाएं। अब आज रात हम इफिसियों के दूसरे अध्याय से पढ़ने जा रहे हैं। ये मैं सब इसलिए कह रहा था कि तब तक आप अध्याय को निकाल लें, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो कि अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर, जो दया का धनी है, अपने उस प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया या मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैं यहाँ से कुछ याने पढ़कर एक भाग केवल परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ भविष्यवक्ता प्रेरित यानी कि पौलुस पर ध्यान दें, जो कि किसी प्रकार से उसने इस बात का उल्लेख किया है, उसने जिसने तुम्हें जिलाया, तुम जो कि मरे हुए थे, उसने तुम्हें जिलाया जो कभी मरे हुए थे, पापों और अपराधों में मरे हुए थे, संसारिक वस्तुओं के पीछे चलते थे, शरीर की इच्छा और मन की मनसाएं पूरी करते थे। ये बदलाव कैसे हुआ, आप समझे? और इसका क्या कारण था कि एक समय मरे हुए थे कि जिलाए जाएं? जिलाने का अर्थ है जीवित करना, मृत्यु से जीवन। ये एक बदलाव आया था। इसको छोड़ इससे बढ़कर कोई और बात किसी मनुष्य के जीवन में हो नहीं सकती, इतने महान कि उसको मृत अवस्था से परिवर्तित करके जीवन में ले आए। एक मनुष्य जो भौतिक रूप में मर रहा है उसे शारीरिक रूप से चंगा किया जा सकता है, ये एक महान बात होगी। परंतु इससे महान क्या होगा जब वो आत्मिक रूप से मर गया हो और परमेश्वर उसे जीवन में जिला दे। आप भी एक बार बीते समय में मरे हुए थे, आप मरे हुए थे। आज रात आप में से यहाँ बहुत से हैं। एक बार बीते समय की याद करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप मरे हुए थे। परंतु आज रात आप मरे हुए क्यों नहीं हैं, जैसे कि आप पहले थे? आप इसी योग्य थे क्योंकि आप पापी थे। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, यही बात है। परमेश्वर जो धनी था, ये सब वस्तुएं हमारे पास थी सिवाय परमेश्वर के, जिसने कि ये बदलाव उत्पन्न किया। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, ओ मैं कितना प्रसन्न हूँ कि वो अनुग्रह में धनी है। यदि वो केवल पैसों में धनी होता, यदि वो केवल वस्तुओं में धनी होता, जो कि वो है, परंतु तो भी महान बात यह है कि वो अनुग्रह में धनी है। ओ ये कितना महान शब्द है। हम कैसे थे जब एक समय हम मरे हुए थे और एक रात हम इस विषय पर बोल रहे थे कि बीज को मरना ही है और हर वस्तु उस जीवांश के चारों ओर होती है उसे मरना ही है। केवल मरना ही नहीं, सड़ना भी है। यदि वो नहीं सड़ेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। और सड़ना पूरी प्रकार से समाप्त होना, वो समाप्त हो जाता है। और जब तक हम उस स्थान तक नहीं आ जाते जहाँ पर हमारी धारणा, हमारे विचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते, हमारे अंदर से चले नहीं जाते, तब जीवन का बीज हम में जीवित होने लगता है। अब मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत देता हूँ, परंतु यदि आप उसका विश्वास नहीं करते तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि जब कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, यानी जब आप छोटे बच्चे होते हैं और संसार में जन्म लेते हैं, तो आप यहाँ परमेश्वर की बिना पहले से जानी हुई इच्छा के बिना नहीं होते हैं, क्योंकि वो असीमित है और वो सब बातें जानता है। और जब वो छोटा बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उस बच्चे में कुछ होता है। यदि वो कभी जीवन पाने वाला होता है तो उस बच्चे में कहीं थोड़ा सा कुछ होता है जो कि उसमें जल्दी या देर में आता है। वो छोटा बीज उसमें होता है। यदि आप वचनों में देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। अब यदि आज रात हमारे पास अनंत जीवन है, तो ये सदा से था, क्योंकि अनंत जीवन केवल एक ही तरह से है। हमारे पास सदा से था, और इसका कारण कि ये हमारे पास था क्योंकि हम परमेश्वर के ही भाग हैं, और केवल परमेश्वर ही ऐसा है जो कि अनंत है। और जिस प्रकार से मल्कीसदक ने अब्राहम से दशमांश प्राप्त किया और वो उसके परपोतों के पोते लेवियों का भाग गिना गया, वो जो कि अभी अब्राहम के अंदर थे, उन्होंने अब्राहम के अंदर से ही जब वो मिल्की सदक से मिला, दशमांश दिया। मैं इस विषय पर कहीं और प्रातः किसी सभा में बोलना चाहता हूँ कि ये मल्की सदक कौन है। आप ध्यान दें, परमेश्वर पहले से ही जानता था कि ये बालक आ रहा है, वो सब कुछ जानता है। अब हम परमेश्वर के भाग हैं। आप सदा से थे, आपको याद नहीं है, क्योंकि आप केवल परमेश्वर के अंदर गुण थे, आप केवल उसके विचारों में थे। आपका ही नाम यदि वो कभी जीवन की पुस्तक में था तो वो संसार के रचने से पहले वहाँ था। वो जानता था कि आप क्या थे। मैं मत या सिद्धांतों में मिलावट करने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु सीधा स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि हम इस डर और भय से मुक्त हो जाएं। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर के पुत्र बनने नहीं जा रहे हैं, परंतु आप अब भी परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए, आप सदा से ही परमेश्वर के पुत्र थे, समझे? जब प्रारंभ में परमेश्वर ने आपको अपने विचारों में रखा तो आपका अपना कुछ भाग होना ही था। आपका जीवन जो आपके अंदर है, ये इससे पहले वहाँ परमेश्वर के साथ होना ही था, इससे पहले कि आप एक पदार्थ बनकर इस धरती पर आते। इससे पहले परमेश्वर को छोड़ कोई और वस्तु नहीं थी, आप उनके एक गुण थे। वो जानता था कि आपका नाम क्या होगा, आपके बालों का रंग क्या होगा, वो जानता था कि आपके विषय में सब कुछ जानता था। केवल एक ही घटना घटी, जब आप पापी हो गए। आप में से बहुत से इन विचारों पर मेरे साथ संगति कर सकते हैं। जब आप छोटे से लड़के या लड़की थे, आप इधर उधर घूमा करते थे, तब आपके अंदर कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ होगा, जबकि दूसरे बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं थी, और ऐसे लगता था कि आपके अंदर कुछ है जो चिल्लाता और पुकारता है। कहीं तो परमेश्वर था जबकि आप पापी थे। आपको याद है ये? अब वो क्या था? वो उस समय एक छोटे से जीवन का रूप आप में था, और जब कुछ समय बाद आपने सुसमाचार सुना, हो सकता है आप गिरजे गए हो और इधर उधर खोजबीन की हो, एक संगठन से दूसरे संगठन में घूमते फिरे हो, परंतु एक दिन आप परमेश्वर का भाग होने के नाते आपको वचन का भाग होना ही था। और जब आपने वचन सुना तो आप जानते हैं कि आप कहां से आए हैं, सत्य क्या था, आप जान गए। आप सदा से थे, बीज आप में हमेशा से था। वचन ने उस वचन को जो आप में था देखा, और ये सृष्टि के रचने से पहले आप में था। वचन ने देखा और आप इसके पास आ गए, जैसा कि मेरी उकाब वाली कहानी में मुर्गी के नीचे निकाला हुआ उकाब कितना ही छोटा क्यों ना हो, और वो छोटा उकाब मुर्गी के बच्चों के साथ घूमता, जब मुर्गी बोलती तो वो उसके बोलने को बिल्कुल नहीं समझ पाया, और उन छोटे चीजों का खाना पिछवाड़े कूड़े पर हुआ करता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वे कैसे खा लेते हैं, परंतु उसके अंदर कुछ था जो बाकी चीजों से कुछ भिन्न था, क्योंकि वो आरंभ से ही उकाब था। ये ठीक बात है। एक दिन उसकी माँ उसे ढूंढती हुई आती है, और जब वो उस उकाब की आवाज सुनता है तो ये मुर्गी की आवाज से भिन्न थी। और नए सिरे से जन्मे विश्वासी के साथ भी यही होता है। यदि आप चाहें तो सारा धार्मिक ज्ञान सुन सकते हैं और मनुष्य की बनाई हुई सारी विरोधी बातें, परंतु जब वचन की चमक होती है तब आपके अंदर कुछ होता है और आप उसके पास आ जाते हैं। आप जो एक समय पापों में मृत थे, तब उसका जीवन हमें जिला देता है। पहले वहाँ जीवन होना है जिसको वो जगा देता है। परमेश्वर अपनी पहले से जानी हुई मनसा में सब जानता है, और हम पहले से ही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां ठहराए हुए थे। तुम जो पहले अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, जहाँ पर हमने अपना सारा समय बिताया, परंतु उसने हमें जिला दिया। पौलुस को देखिए, जब वो महान धार्मिक विद्वान था, परंतु जब वो यीशु के वचन के सामने आया, वो जी उठा, वो तुरंत जीवित हो गया, क्योंकि वो पहले ही से इसके लिए ठहराया गया था। वो वचन का भाग था, और जब वचन ने वचन को देखा, ये उसका स्वभाव था। उन रूढ़िवादी गिरजों में उन मुर्गियों की आवाज उस पर कोई प्रभाव न डाल सकी। उसने वचन देख लिया, वो उसका भाग था। वो चूजा नहीं, उकाब था। वो तो कुछ समय के लिए घूरे पर उनके साथ था, परंतु वो तो प्रारंभ ही से उकाब था। ऐसी ही एक और कहानी मैंने सुनी है, एक छोटी बत्तख की, जिसने एक समय मुर्गी के नीचे जन्म लिया। मैं आशा करता हूँ कि ये बुरी नहीं लगेगी। वो नहीं समझ सका, एक छोटा सा अजीब सा जन, उसकी समझ में ये मट्टी वगैरह नहीं आई। वे अनाज वाले मैदान में खेलते थे, परंतु एक दिन वो बूढ़ी मुर्गी सब बच्चों को खलियान के पीछे ले गई, और उसे पानी की गंध लगी। भाई फिर तो वो पानी की ओर जितना हो सकता था उतनी तेज दौड़ गया। क्यों? वो तो पहले कभी तालाब पर नहीं गया था, वो कभी भी पानी में नहीं गया था, परंतु वो तो जन्म से ही बत्तख था। केवल ये था कि उसे अपने आप में आना था। विश्वासी भी ऐसा ही होता है, उसमें कुछ होता है। जब वो परमेश्वर से आमने सामने मिलता है तो अपने आप में आ जाता है। वो बीज जो उसके अंदर है वो उत्तेजित हो जाता है। अरे भाई ये तो बिल्कुल सत्य है। और वो संसार की वस्तुओं से दूर हट जाता है, वो उसके लिए मर जाती हैं। मैं याद करता हूँ कि हम सब में बीते दिनों में सांसारिक वस्तुओं का जीवन था, परंतु एक बार जब हमें मूल वस्तु मिल गई, वो चीज जिसने हमें जीवित कर दिया, एक छोटा बीज जब जीवित हुआ तब संसार की सारी वस्तुएं वही बेकार हो गईं। हमें अब उन वस्तुओं के लिए कोई इच्छा न थी। वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता। वो उपासक जो एक बार शुद्ध हो चुका उसके अंदर पाप का विवेक नहीं होता, पाप करने की कोई इच्छा नहीं होती। पाप का प्रश्न समाप्त हो गया। आप मसीह में परमेश्वर के भाग हैं। मसीह आपको बचाने के लिए मरा। अब जरा इन बातों पर सोचें कि हम क्या होते यदि ये सब परमेश्वर द्वारा ना होता। परंतु परमेश्वर ने जो अनुग्रह में धनी है उसने आज रात हमें बचा रखा है। यदि परमेश्वर अनुग्रह में धनी ना होता तो आज रात हम कहाँ होते? मनुष्य के कारण ही भ्रष्टता संसार में आई, और यहाँ तक एक समय संसार इतना पाप में हो गया था कि परमेश्वर भी मनुष्य को बनाकर दुखित हुआ। पूरा सर से लेकर नीचे तक सारा शरीर सड़हाट से भर गया था, और यहाँ तक कि परमेश्वर मनुष्य के बनाने से दुखित हुआ। उसने कहा, मैं उस मनुष्य को जिसको मैंने रचा था नष्ट कर दूंगा। वो उन्हें नष्ट कर देगा क्योंकि उसमें अब भ्रष्टता को छोड़ और कुछ भी नहीं है। और उस समय सारी मनुष्य जाति समाप्त हो जाती। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह दया में धनी है वो निर्दोष को दोषियों के साथ मरने नहीं देगा। और उसने जाकर एक मार्ग उन लोगों के लिए तैयार किया जो उस पर चलना चाहते थे और जो वही करना चाहते थे जो ठीक था। उसने एक अनुग्रह का मार्ग उनके लिए बनाया जो अनुग्रह की इच्छा रखते थे, और उसने एक जहाज बनाया। दूसरे शब्दों में उसने अपने उकाबों को पंख लगा दिए ताकि वो न्याय से ऊपर उड़ सकें और चूजे के साथ न डूब जाएं। उसने नूह के दिनों में बच निकलने का एक मार्ग बनाया। उसने मार्ग बनाना ही था, इसका प्रबंध करना ही था, क्योंकि वो अनुग्रह में धनी है। परंतु उसके इस मार्ग का प्रबंध कर देने के बाद उन्होंने इसका इनकार कर दिया। अब उनके इस मार्ग का इनकार करने का कारण ये था क्योंकि उनके अंदर इसे ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं था। मेरी माँ कहा करती थी, तुम शलगम में से लहू नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें लहू होता ही नहीं। इसलिए यदि वहाँ जीवन का कुछ भी नहीं है कि इसे ग्रहण करे तो ये ग्रहण नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि फरीसी यीशु के चेहरे की ओर देख सकते थे और उसे बालजबूल कहते थे, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे ग्रहण करते। परंतु वो सब जो पिता ने मुझे दिया है उसने कहा वो मेरे पास आएगा। कोई तो तरीका है जिससे कि वो प्रकट होगा। आप कभी सड़कों पर चलते हुए लोगों से प्रभु के विषय में बात करें तो वो आपके सामने हंसते हैं। हमें कैसे भी ये करना है, परंतु सुनिए, जब तक पहले पिता ही ना खींच ले कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता। परमेश्वर को ही खींचना है, उसमें जीवन होना ही है, और वो सब जो उसने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। जो बचना चाहते हैं उनके लिए तरीका बना है, जो चंगा होना चाहते हैं उनके लिए उसने प्रबंध किया है, और ये क्योंकि उसने किया है इससे वो अनुग्रह में धनी हो जाता है जैसा कि वो सदा से अनुग्रह में था। ये होना ही है। यदि आप इसे निकालते हैं तो फिर केवल न्याय के और कुछ नहीं है, क्योंकि पाप का न्याय होना ही है। फिरौन जब नकल करने के लिए समुन्द्र पर पहुंचा, ये देखकर जैसा मूसा चला गया वो भी जा सकता है, ऐसा लगता था कि मूसा अपनी सेना के साथ और फिरौन अपनी सेना के साथ दोनों ही समुद्र में नष्ट हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है उसने अपने हिब्रू बालकों के लिए बच निकलने के लिए मार्ग बनाया, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को ठीक ठीक पूरा कर रहे थे, वो वचन का पालन कर रहे थे। अब केवल यही तरीका है कि हम अनुग्रह प्राप्त करें, जो आज्ञा इसने हमें पालन करने के लिए दी है उनका पालन करें। यही विधि है जिससे वो अनुग्रह प्रकट करे कि जो बातें उसने करने के लिए कही हैं उनका पालन करें। अधिक समय नहीं हुआ कि एक सेवक से छोटा सा वाद विवाद हुआ, जिसमें उसने कहा कि मैं इन दिनों में प्रेरितों के मत सिद्धांतों को सिखा रहा हूँ। मेरे विश्वास में इस बारे में एक दो रात पहले बता चुका हूँ कि उसने कैसे कहा, तुम इस युग में प्रेरितों के सिद्धांतों को लोगों के हृदय में डालने का यत्न कर रहे हो। उसने कहा प्रेरितों के साथ ही उनका युग समाप्त हो गया। और मैंने उससे पूछा, क्या आप वचन का विश्वास करते हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा प्रकाशित वाक्य 22:18 कहता है कि जो भी इसमें एक भी शब्द घटाएगा या इसमें एक शब्द बढ़ाएगा, दो शब्द नहीं, एक शब्द भी निकालेगा। कहा कि मैं ये विश्वास करता हूँ। मैंने कहा कि मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर प्रेरित युग दिया गया है और प्रेरितों की आशीषें कलीसिया को दी गई हैं। अब आप मुझे ये बताएं वचन में कि कब परमेश्वर ने ये कलीसिया से वापस ले ली। आप नहीं बता सकते, ये वहाँ है ही नहीं। मैंने कहा अब याद रहे कि पतरस जो पेंतिकुस के दिन प्रेरित युग का परिचय करवाने वाला बना और उसने सबको बताया कि प्रायश्चित करें और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। अब यदि आप किसी संगठन की मुर्गी की आवाज़ सुनना चाहते हैं और संसार की उन्हीं बातों में जीवित रहना चाहते हैं, तो ये प्रकट होगा कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये तो वचन है। जो भी चाहे आ सकता है, और यदि आप में इच्छा है तो आपको आना चाहिए, परंतु यदि आप में इच्छा नहीं है तो आपकी स्थिति शोचनीय है। परंतु यदि आप में इच्छा है कि आप आए तो आकर परमेश्वर का सिद्धांत का पालन करें, और जो भी उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में वो कभी भी असमर्थ नहीं है। एक समय मैं युवक था और अब बूढ़ा हूँ, मैंने उसे उसके वचन में कभी भी असमर्थ होते नहीं देखा, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है परंतु असफल नहीं होता, वो नाकामयाब नहीं हो सकता। परमेश्वर के लिए असंभव है कि वो असमर्थ रहे और परमेश्वर बना रहे, उसको तो ये करना ही है। फिरौन की सेना ने नकल करने की कोशिश की, क्योंकि वो बुलाए हुए नहीं थे और उनके अंदर वो जीवन नहीं था। फिरौन से कोई प्रतिज्ञा नहीं हुई थी, उससे प्रतिज्ञा के देश की कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, और नकल करने वाला विश्वासी के पीछे चल रहा है। वो केवल इसलिए बुलाया गया है कि ऐसा करने से हंसी का पात्र बने। हमारे धार्मिक तंत्र के साथ आज यही बात है। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा की नकल उतारने का यत्न कर रहे हैं, बहुत से लोग बपतिस्मे की नकल कर रहे हैं, बहुत से प्रेरितों के युग की नकल कर रहे हैं। ये तो केवल विश्वासियों के लिए है, केवल उन्हीं के लिए। परमेश्वर ने जो अनुग्रह में धनी है उसने ये मार्ग बनाया है कि उसके बालक नष्ट न हो, ये उसने उनके लिए मार्ग बनाया है। अब फिरौन जो पीछा करने की कोशिश कर रहा था उसी पानी में डूब गया जिसने मूसा और उसके झुंड को बचाया। मूसा नहीं डूबा, क्योंकि परमेश्वर जो अनुग्रह में उन लोगों के लिए धनी है जो उसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आमीन। आप देख सकते हैं मेरा क्या अर्थ है। आज रात वो लोग जो दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करते, वो लोग जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करते, तो वो कैसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर उनके लिए अनुग्रह में धनी है जो उसका अनुकरण करते हैं, न कि मतों का परंतु परमेश्वर का। परमेश्वर वचन है और उसने शरीर बनकर हमारे बीच में वासा किया, ताकि वो अब हमारे सामने परमेश्वर की दूसरी विशेषता ला सके। वो शरीर यीशु परमेश्वर का शरीर था, एक विशेषता या गुण था। मूसा ने उसे निकलते हुए पीठ की ओर से देखा, किसी भी मनुष्य ने उसका मुख नहीं देखा, परंतु हमने उसे देखा है, हमने उसकी ओर एक बलिदान के रूप में निहारा है, ताका है। अब वो देखिए, वो परमेश्वर की एक गुण था जो कि वचन के रूप में प्रकट किया गया था, यही वो था भी। और जब कोई विश्वासी परमेश्वर के पास आता है तो वो उसके वचन का गुण बन जाता है, वो उस समय के वचन की प्रतिज्ञा को प्रकट करता है। समझे, ये ठीक बात है। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है हमें बिना गवाही के नहीं छोड़ता, वो अनुग्रह में धनी है। हम पाते हैं कि परमेश्वर मूसा पर मृत सागर व लाल सागर पर उस जगह इतना अनुग्रहकारी था तब उसने यहाँ निर्गमन 19:4 में उनसे कहा, मैं तुम्हें उकाब के पंखों पर अपने पास ले आया, उनको उकाब के पंखों पर और आपको अपने में ले आया। वहाँ सागर के बीच में एक और व्यक्ति था जो नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वो उनको उकाब के पंखों पर ले गया? परमेश्वर सदा अपने भविष्यद्वक्ताओं को उकाबों से दर्शाता है, और ये क्या था? मूसा उसका दूत था और वो मूसा के पीछे चल रहे थे क्योंकि उसके पास परमेश्वर का संदेश था, और यही उकाब के पंख थे जिस पर वो ले जाए गए, और लोगों ने उसका अनुकरण किया। जब वो मूसा के छुटकारे के संदेश के पीछे चल रहे थे तो वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, और बाइबल बताती है कि वो जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसके साथ नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर उनके लिए अनुग्रहकारी था क्योंकि वे उसके आदेश का पालन कर रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम यही बात कोरा और दातान और उनके झुंड अविश्वासी लोगों के लिए कह सकते हैं, जैसा कि वो उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे। वे परमेश्वर के कार्यक्रम में गड़बड़ करना चाहते थे। उन्हें एक मनुष्य कार्यक्रम पसंद नहीं था, उन्हें ये पसंद नहीं आया, उन्हें तो कुछ करना ही था। कोरा ने कहा, क्यों मूसा, यहाँ तुमसे भी अधिक पवित्र लोग हैं, तू अपने को ऐसा दिखाता है जैसे तू ही एक समुद्र का किनारा है या तू ही समुद्र के किनारे का एक चिकना पत्थर हो। और उसने कहा, मैं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ और भी लोग हैं। और मूसा ये जानता था कि वही इन बालकों को उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा उसी से की गई थी, और उसे उन्हें प्रतिज्ञा की हुई भूमि में पहुंचाना है। और आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन सत्य सिद्ध करने के लिए यहाँ है, और यही उकाब के पंख हैं मानो जिस पर कि हमें सवार होना है, न कि मनुष्य के द्वारा बनाए धर्म ज्ञान पर, परंतु हमें उकाब के पंखों पर सवार होकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना है। और यह कोरा के विचार चूजों के झुंड को इकट्ठा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि वो उकाब की नकल करने आए हैं, और जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को उनसे अलग करो, और उसने संसार को निगल लिया। उसने तो सबको, सारी सृष्टि को निगल लिया होता, परंतु परमेश्वर उनके लिए अनुग्रह में धनी है जो उसके वचन का पालन करते हैं। परमेश्वर सदा अनुग्रह में धनी है। उनमें से बहुत से मूसा की ओर आ गए, और परमेश्वर ने धरती को खोल दिया और वो अविश्वासियों को निगल गई। वो जो अविश्वासी है हमेशा नष्ट होगा। वे लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया, यद्यपि वो बाहर निकल आए और कुछ समय साथ चले, यीशु ने कहा, परंतु वे सब मर गए, और मृत्यु अस्तित्व का मिट जाना है, वे मरे हुए हैं। जरा उनके विषय में सोचें, वे निकल कर आए और परमेश्वर के आश्चर्यक्रम देखे, परमेश्वर के बलवंत हाथ को देखा, मन्ना से आनंदित हुए, और वहाँ से निकल कर एक मनुष्य की सुनी जिसका नाम बालाम था, जिसने परमेश्वर के मार्ग को अपने वचन विरोधी शिक्षा से भ्रष्ट किया। हम सब भाई हैं, इसलिए आइए हम सब इकट्ठे हो जाएं। आज बालाम का दूसरा कार्यक्रम खड़ा हो रहा है, चलिए सब इकट्ठे हो जाएं। ये काम नहीं करेगा। आइए हम उकाब के साथ चलें। यहोवा उकाब और आप छोटे उकाब हैं। उस पूरे झुंड में से केवल 3 बचे, मूसा, कालेब और यहोशू, और बाकी सब जंगल में नष्ट हो गए। यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु ने ऐसा ही कहा है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में उनको कभी अविश्वासियों के साथ नष्ट नहीं होने देगा। वे सब वही जंगल में मर गए और वो मरे हुए हैं। परमेश्वर ने मूसा और विश्वासी उकाबों को बचा लिया क्योंकि उन्होंने वचन का आदर किया। और मित्रों, आज हम एक ही विधि से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर जो आज अनुग्रह में धनी है, केवल जो उसने कहा है उसका आदर करें। किसी और ने क्या कहा है उससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर ने जो कहा है वो लेना होगा। उसने कहा, हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सच्चा। आज हमें बहुत से स्थानों में ये बताया जाता है कि आपको केवल ये करना है कि गिरजे की सदस्यता को लें और उनके मत के विश्वास या जो भी है उसे ग्रहण कर लें, या प्रार्थना बोलो, या अपना नाम किताब में लिखवा लो, या छींटे पढ़वा लो, या किसी विशेष तरह का बपतिस्मा, या ऐसे ही कुछ। बस केवल यही करना है, परंतु यह गलत है। परमेश्वर का उगाव होने के लिए आपको दिन प्रतिदिन उसके वचन का पालन करना होगा। आपको लगातार वचन रूपी भोजन खाना होगा। अब इसके बाद हम फिर से उन्हें बुड़बुड़ाते हुए पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह दिखाने के बाद हम उन्हें विश्वास में निर्बल पाते हैं और हम देखते हैं कि वे परमेश्वर पर बड़बड़ाते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वे सांप के काटने से मर रहे थे। देखिए, वे सी योग्य हैं, उन्होंने यही किया। कोई भी जो परमेश्वर के वचन में गलती करता है और वही करे जो उन्होंने किया तो वो मरने योग्य है। जिन्होंने भी उनमें से इच्छा की वे जंगल में मरने के योग्य ठहरे। परंतु जब वे इतने बीमार थे कि डॉक्टर मूसा था, कोई भी कुछ नहीं कर सका और वे हजारों की संख्या में मर रहे थे, परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, उसने उनके लिए जो उस पर विश्वास कर सकते थे उनके बच निकलने के लिए मार्ग बना दिया। उसने पीतल का सांप स्थापित करने के द्वारा विस्मार दवा बना दी। परमेश्वर ने उदारता में बच निकलने का मार्ग बना दिया ताकि उसके विश्वासी बच्चे चंगे हो जाएं। परमेश्वर हर गलती में रुचि रखता है। वो हर बात जिसकी आप आशा करते हैं, जीवन के हर मार्ग में परमेश्वर आप में रुचि रखता है। आप उसके बालक हैं और वो अनुग्रह में धनी है। वो आपके लिए करना चाहता है। उस पीतल के सांप के द्वारा परमेश्वर ने उनके लिए प्रायश्चित का मार्ग बनाया, जो कि ये दर्शाता है कि पाप का न्याय हो चुका। उसको जीवन में ले लेने के बाद भी उन्होंने पाप किया। उस वरदान को उन्होंने मूर्ति पूजा में बदल दिया और इससे फिर पाप हुआ। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, इसलिए हमारे पास दो तीन चार ईश्वर नहीं हो सकते। केवल एक ही परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी वस्तु में नहीं बांटेगा। वो तो स्वयं अकेला परमेश्वर है, समझे? इसलिए मूर्ति पूजकों के पास बहुत से ईश्वर हैं। हमारे पास एक ही परमेश्वर है और वो अपनी महिमा दूसरे के साथ नहीं बांटेगा, ना ही वो अपने सामने किसी वस्तु को मूरत बनने देगा। यद्यपि उसने लोगों के लिए मेल मिलाप का साधन बनाया था और वो परमेश्वर का वचन था, वो ठीक था, परंतु जब वो मूर्ति पूजा के रूप में बदल गया तब वे संकट में पड़ गए। मैं सोचता हूँ कि यही वो बात है जो हमारी कलीसिया युगों में हुई है। परमेश्वर ने मार्टिन लूथर का संदेश उसके संदेश के साथ भेजा, जॉन वेस्ली पेंटिकोसल के संदेश के साथ, परंतु हम इसका क्या करें? बिल्कुल वही बात जो उन्होंने पीतल के सांप के साथ की थी कि हमने इसकी मूरत बना ली। मैं इससे संबंध रखता हूँ और मैं इससे संबंधित हूँ। देखिए, आप किसी चीज से बिना सच्चाई के साथ संबंधित हैं, जो कि मूल वचन की ईश्वरीय आराधना से जुड़ा हुआ है। बाइबल में क्या हुआ? बाइबल हमें बताती है कि भविष्यद्वक्ता ने मूर्ति ली और उसे नष्ट कर दिया। हालेलुया! आज के दिन हमें किस बात की आवश्यकता है? ये कि भविष्यद्वक्ता उन संगठनों की मूर्ति को ध्वस्त कर दे जिस पर कि वे सोचते हैं कि हम अपने इन मतों या संगठनों से जिससे संबंधित है इनके द्वारा स्वर्ग को जाएंगे। आवश्यकता है कि इन्हें नष्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए, फेंक दिया जाए। परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण है, वो अनुग्रह में धनी है। इन दिनों में जब हमारे सामने दुर्व्यवस्था का अंधकार चारों ओर है, परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने हमारे पास अपना पवित्र आत्मा अपनी व्यवस्था के साथ भेजा है, जो कि इस समय आज रात इस भवन में है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। हम उसे कितनी महिमा के योग्य पाते हैं। जी हाँ, उन्होंने सोचा जो वे कर सकते थे कि केवल उस सांप के पास जाकर या उस वस्तु के जिसको परमेश्वर ने बनवाया था, जिसको मूसा ने बनाकर खंभे पर लटकाया था, और वो ठीक हो सकते थे बिना किसी हृदय की सच्चाई के। वे केवल खड़े होकर उसे देखते थे और उन्होंने उसकी मूर्ति बना ली और परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता भेज कर और उसे नष्ट कर दिया। अब जिन्होंने जंगल में उस सांप की ओर देखने से मना किया, वे नष्ट हो गए। परमेश्वर एक मार्ग बनाता है। यदि आप उसकी ओर देखने से मना करते हैं, यदि आप सड़क पार बैठकर अपने मत को पकड़े बैठे रहेंगे और सीधे वचन में देखने से इनकार करेंगे कि ये ठीक है या नहीं, वे सब जिन्होंने देखने से इनकार किया नष्ट हो गए। और परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। उन सब ने जिन्होंने देखने से इनकार किया नष्ट हो गए। आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि उन्होंने हमेशा से किया, उन्होंने बाद में पाप किया और उसकी मूरत बना ली, उसे बनाया और उससे बिना हृदय की सच्चाई से चंगाई प्राप्त करने की कोशिश की, और वो किसी चीज से संबंधित थे जिस प्रकार आज हम हैं। और तब हम इसमें भिन्नता देखते हैं, जो कि परमेश्वर का ये एक अच्छा छुटकारा था और उस समय के लिए अच्छा चिन्ह था। उस समय ये ठीक था, परंतु ये केवल उस समय उस यात्रा के लिए था। वो केवल उस यात्रा में ही काम आने के लिए था। और वो संदेश जो मार्टिन लूथर न्यायोचित ठहराने का लाया था, वो लूथर युग के लिए ठीक था। और जहाँ तक वो चला, पवित्रीकरण वेस्ली युग में ठीक था और वो जब तक चला। तब हम पेंतेकुस्तल युग में आते हैं और वरदानों का वापस आना बहुत अच्छी बात है। वो उस समय ठीक था, परंतु अब उस युग से आगे बढ़ रहे हैं। हम उससे आगे हैं। जब तक ये संसार है, हमें उन बातों से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने भी वही कार्य किया है जो उन्होंने पहले किया था, उसकी मूर्त बनाकर। मैं इस कार्यक्रम से संबंधित हूँ, मैं उस कार्यक्रम से संबंधित हूँ। परमेश्वर किसी को भेजेगा जो इन चीजों को ध्वस्त कर देगा और टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देगा और उसके वचन को प्रमाणित करेगा, पूरे वचन को। ध्यान दें, परमेश्वर की महिमा हो। अब हम देखते हैं कि ये सत्य है, परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। तब जब भविष्यद्वक्ता ने इसे नष्ट कर दिया, तब वे चंगाई और छुटकारे के लिए बिना चिन्ह के रह गए, क्योंकि उनकी मूरत नष्ट हो गई। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने उनके लिए दूसरा बनाया। और उसने क्या किया? उसने मंदिर के पास तालाब में पानी को हिलाना आरंभ किया, और बहुत से आकर उस पानी में उतरकर चंगे हुए। यीशु उसी तालाब के पास आया और एक मनुष्य को पड़ा देखा जो वहाँ वर्षों से पानी हिलने की प्रतीक्षा में था। देखिए, परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, यदि उन्होंने इसकी मूर्त बना ली थी और भविष्यद्वक्ता को उसे नष्ट करना पड़ा था, परमेश्वर ने उनके लिए दूसरा रास्ता बनाया, क्योंकि वो दया में धनी था और वो उन्हें चंगा करना चाहता था, और उसने उनके लिए चंगाई के लिए तरीका बनाया। अब इस प्रकार चलता रहा, संसार और पापमय हो गया और समय बीतने के साथ और अधिक पापमय होता गया, और अंत में संसार इतना पापी हो गया कि परमेश्वर इसे नष्ट कर देता। तब मलाकी 4 में कहा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। वो ऐसा कर सकता था, ये प्रश्न है। परंतु तब परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने एक बचाने वाला भेजा, यीशु मसीह, और उसने यीशु को बचाने वाला और चंगा करने वाला दोनों करके भेजा, क्योंकि उसने कहा, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इसीलिए मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाना चाहिए। उसी उद्देश्य के लिए वो जो कि छुटकारा है, हम उस पर किसी और बात का दावा नहीं करते, केवल छुटकारे का, जो यीशु ने अपने लहू से खरीदा, हम उसी का दावा करते हैं। और बाइबल ने कहा कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वो हमारे धर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यही है जिसका हम दावा कर सकते हैं, क्योंकि यही छुटकारा है, इसी का हम जिम्मा लेते हैं, यही हमारे लिए आज्ञा दी गई है। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, क्योंकि वह स्वयं आया, इसलिए यह अनंत छुटकारा होना ही था। परमेश्वर स्वयं पाप समान शरीर में आया ताकि अनंत छुटकारा कराए और शरीर में कष्ट उठाकर छुटकारा उपलब्ध कराया, और पवित्र आत्मा के रूप में वापस आकर उस छुटकारे को प्रमाणित किया, जिसको कि पीतल का सांप और हिलने वाला पानी नहीं कर सकते थे। ये सब सिद्ध छुटकारे की ओर संकेत करते थे। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने ये किया। और आज जब हम इन दिनों में रह रहे हैं, हम इन कलीसिया युगों से आ रहे हैं और इसके द्वारा सारी बातों की व्याख्या दी जा चुकी है। हमारे आज के धर्म ज्ञानियों ने उस भाग को खो दिया है। उन्होंने इन बातों को किन्हीं और दिनों की ओर, दूसरे युगों, कुछ और चीजें, पिछले समय को और बताकर व्याख्या की है, और दिव्य चंगाई को तो हटा ही दिया है। और शायद कोई मिले जो इसका विश्वास करता हो, वो इसका उपहास बनाते हैं। 20 वर्ष से अधिक नहीं हुए जब वे इसका मजाक उड़ा रहे थे और पेंतिकॉस्टल प्रकट रूप में इससे अलग हो गए। उन्होंने आरंभ के दिनों में आरंभ किया, परंतु वे इससे अलग हो गए। देखिए उन्होंने कैसे किया, वे संगठनों में मतवाले हो गए, अपने मत बनाने के लिए भागते फिरे, वगैरह वगैरह, बजाय इसके कि ज्योति को ग्रहण करें। जबकि ज्योति आई है, वे संस्था में ढल गए और अपने अपने मत बनाकर, हर एक ने अपना अपना सिद्धांत बना लिया है और उसी सिद्धांत में रुका हुआ है। और तब इन्होंने इतना कुछ बनाकर अपना लिया है कि पवित्र आत्मा कलीसिया में आ ही नहीं सकेगा, और वे एक और मूरत पीतल के सांप के समान हो गए, वे मूर्ति पूजक हो गए, पर अनुयायी यही कहता है मैं इससे संबंधित हूँ और उसका सदस्य हूँ। ये मूर्ति पूजा थी। अंत के समय हम कितनी गड़बड़ी में हैं, परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है उसने पवित्र आत्मा फिर से हमारे ऊपर भेजी है और प्रतिज्ञा अनुसार आज रात अपने वचन को प्रमाणित कर रहा है, वो करेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो इन चीजों को करेगा। देखिए उसने क्या किया। अब हम देख सकते हैं उसने किस प्रकार से जो हर युग के लिए विशेष प्रतिज्ञा की जो पूरी हुई, और हम ये पाते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हुआ जो उसने कहा था कि वो करेगा, क्योंकि वो अनुग्रह में धनी है और वो अनुग्रह करता है जो कि प्रतिज्ञा उसने की है, अपने हर वचन को पूरा करता है। उसे परमेश्वर बने रहने के लिए हमेशा करना ही है। वो हमेशा ये करता है, उसका वचन सदा अपने समय में घटित होता है। उसका बीज जो उसने पृथ्वी में बोया है वो क्या करता है, वो यहाँ उसे वचन में रखता है और वही बीज है, और हर बार जब वो युग आता है तो वो बीज पक जाता है और तब सुधार होता है, और उसने ये प्रतिज्ञा की है और वो वही करता है। हम इन बातों के योग्य नहीं हैं। हम परमेश्वर की इन आशीषों के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम संसारिक वस्तुओं के पीछे चले गए। हमने केन वाली गलती की। केन ने सुंदर वेदी बनाई, सुंदर गिरजा बनाया और उसमें फूल रखे और सोचा कि यही था, वो सेब था या नाशपाती या अनार या जो कुछ भी उसके माता पिता ने अदन वाटिका में खाया, जिससे उन्हें बाहर निकालना पड़ा, और इस प्रकार उसने परमेश्वर को वापस समर्पित किया और परमेश्वर ने नकार दिया। परंतु विश्वास से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। बाइबल यहूदा की पत्री में कहती है वे केन किसी चाल चले और कोरा के नाई विरोध करके नाश हुए। देखिए केन किसी चाल चले, वेदियां बनाई, गिरजे बनाए, संगठन बनाए, फूलों से सजाया, बहुत सारे सदस्य बनाए और के मुकाबले बहुत सी चीजें ले आए जो भी साथ आई, और उछल कूद या हाथ मिलाना या किसी विशेष विधि का बपतिस्मा ले आए या अन्य भाषाएं बोली या फर्श पे दौड़े अपने नाम रजिस्टरों में लिखवाए, ये ठीक बात है, और उस मूल सत्य से फिर गए जिसे प्रचार करना था और उसका इनकार किया। ये ऐसे कैसे हो सकता था? ध्यान दें हम कैसी गड़बड़ में हैं। ध्यान दें, और बाइबल कहती है वे बालाम की चाल चले और कोरे के नाई विरोध करके नाश हो गए, विरोध करके नाश हुए। कोरा ने क्या विरोध किया? क्यों? तू क्या सोचता है? क्या केवल तू ही पवित्र जन है? क्यों, हम सब परमेश्वर के पवित्र जन हैं। पूरी कलीसिया सब कुछ है, हमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें यही करना चाहिए, और यही इसी में वे नाश हो गए। हम सच में इसी योग्य हैं, हमें भी ऐसा ही होना था, परंतु परमेश्वर अनुग्रह में धनी है, उसने हमें इस दुर्व्यवस्था से खींच लिया। आइए हम इसे निशाने से पहले देख लें। वो अनुग्रह में धनी है और उसने हमारे पास वापस दिव्य चंगाई की बेदारी भेजी है, और परमेश्वर की सामर्थ फिर वापस आ रही है। इतिहास के अनुसार कोई भी बेदारी 3 वर्ष से अधिक नहीं चली। ये बेदारी पिछले 15 वर्षों से चली आ रही है। ये विश्व में जलती हुई आग की तरह फैल रही है। क्यों? क्या हम इसके योग्य हैं? परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है, इसलिए नहीं कि हमने इसकी इच्छा की है या क्योंकि हम इसके योग्य हैं। थोड़ा सोचिए कि ये क्या हुआ है। मैं आपकी एक बहन जो कि यहाँ फिनिक्स में है उसके विषय में सोचता हूँ। आप में से बहुत से जानते हैं श्रीमती हैटी वेल्ड्रॉफ, उनके हृदय में कैंसर था, और वो यहाँ प्रार्थना पंक्ति में थी जब भाई मूर और मैं यहाँ 15 वर्ष पहले पहली बार आए थे, और वो हृदय के कैंसर से मर रही थी और उन्हें बहुत पहले ही मर जाना था, परंतु परमेश्वर अपनी दया में धनी है, उसने अपनी सामर्थ्य उन पर भेजी और उसके जीवन को बचा लिया और वो आज जीवित है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। अपशॉ, कांग्रेसी व्यक्ति, महान व्यक्ति, मैं सोचता हूँ दक्षिणी बैप्टिस्ट बेदारी के वे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं या ऐसे ही कुछ। उसने सब कुछ किया था, वो अच्छा व्यक्ति था, वो जो भी जानता था वो सब कुछ उसने कर लिया था, और वो हर डॉक्टर के पास गया, उसके लिए कोई कुछ न कर सका, वो नीचे की ओर झुक गया था। सेवकों ने उसके लिए प्रार्थना की, उसके सर पर गैलनो तेल डाल दिया गया था अभिषेक के लिए, भिन्न भिन्न सेवकों द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर, और एक रात लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में वो पुलपिट पर आया। उसने पहिए की कुर्सी का ढेर देखा जो वहाँ बैठे हुए लोगों की गिनती से लगभग दुगना या तिगना था। वो गिरजों के गलियारे में ऊपर नीचे पड़ी थी, और वहाँ एक चरपाई पर छोटी काली निगरो लड़की पड़ी थी और उसकी माँ उसके बराबर में बैठी थी और मेरा भाई प्रार्थना पंक्ति को ऊपर की ओर ला रहा था और मैं देख रहा था और नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। और मैंने एक डॉक्टर को मुंह पर मोटा शीशा लगाए एक निगरो लड़की का ऑपरेशन करते देखा। उसके गले का ऑपरेशन था और उसे लकवा मर गया और मैंने चारों ओर देखा। मैंने सोचा ये बच्चा कहाँ है, मैं उसे नहीं देख पा रहा था। और थोड़ी देर बाद उस प्यारी छोटी लड़की के लिए कोई आशा नहीं थी जो कि लगभग 7-8 साल की थी और उसे सारा जीवन इसी लकवे वाली स्थिति में रहना था। और वहाँ उसकी माँ अपने घुटनों पर झुकी हुई प्रार्थना कर रही थी। तब मैंने कहा इस डॉक्टर ने आपकी छोटी लड़की का ऑपरेशन किया है और बाकी विवरण दिया। वो बोली ठीक बात है। तब वो उस बच्चे को मंच पर लाने का प्रयत्न करने लगी। उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने उसे शांत करने का यत्न किया। जिस समय उन्होंने उसे शांत किया मैंने सोचा कि हम उसके लिए प्रार्थना करने का मौका निकाल पाएंगे। थोड़ी देर में हो सकता है कुछ लोग जो यहाँ हैं उस रात वहाँ थे और मैं श्रोताओं की ओर देख रहा था। मैंने देखा कि वो छोटी लड़की वो छोटे से रास्ते पर अपनी गुड़िया को लेकर झुलाती हुई जा रही है। इससे कोई मतलब नहीं कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा है कि वो अपने शेष जीवन भर लकवे में पड़ी रहेगी। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है उसने दर्शन के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा को भेज दिया और वो छोटी लड़की वहाँ उठ खड़ी हुई और वो उसकी माँ हाथ पकड़े हुए गिरजे के गलियारे से परमेश्वर की महिमा करते हुए चले गए। वहाँ पीछे एक बूढ़ा कांग्रेसी अपशॉ बैठा हुआ था। आप में से बहुत से उसकी गवाही जानते हैं। वो एक अच्छा मनुष्य था। जीवन में सारी कोशिशें कर ली थी। 66 वर्षों से अपंग पहिए की कुर्सी में था, पलंग से लग गया था। बगल में बैसाखी थी जिनसे वो चलता था और कभी भी साधारण मनुष्य की तरह नहीं चला था। और वहाँ वो बैठा हुआ ये सब देख रहा था और यकायक मुझे एक दर्शन दिखाई दिया। उसमें वो पीछे सभा में पैदल चलता हुआ नीचे आ रहा था, अपना सर झुकाए बिल्कुल अच्छी तरह जैसे कोई आम आदमी चलता है। मैं नहीं जान पाया ये कौन व्यक्ति था। मैंने कहा वहाँ कोई महान व्यक्ति पीछे बैठा है। वो जब छोटा लड़का था गाड़ी में से चारा रखने के ढांचे पर गिर पड़ा था और उसकी कमर में चोट आई थी। उन्होंने फर्श में छेद कर दिए थे ताकि लोग जब चल रहे हैं तो उसकी पैरों की धमक उसकी कमर में ना महसूस हो। मैंने कहा वो महान व्यक्ति बन गया और वो और महान होता गया और वो व्हाइट हाउस के महान लोगों में बैठा है। और तब एक आदमी ने आकर मुझे बताया कि वो कांग्रेस का आदमी अपशॉ है। आपने क्या उसके विषय में सुना है? मैंने कहा मैं उसके विषय में कभी नहीं सुना। और उस व्यक्ति ने भाग कर माइक को पीछे की ओर ले गया और वे वहाँ पीछे बात कर रहे थे। तब मैंने चारों ओर देखना आरंभ किया और मैंने देखा दर्शन में एक बूढ़ा कांग्रेस का आदमी मेरी ओर चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल सिद्ध साधारण चाल में जैसा वो चल सकता था। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है उसने उसे पहिए की कुर्सी में से खींच लिया और वो बिना बैसाखी के अपनी मृत्यु के दिन तक चलता रहा। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। जब डॉक्टर असफल रहे, जब विज्ञान असफल हो गया, जब सब चीजें असफल हो गईं, परमेश्वर उस कांग्रेसी मनुष्य अपशॉ के लिए अनुग्रह में धनी था। मैं अपने लिए ऐसे ही सोचता हूँ जैसा साधारण समझदार लड़का होता है। मुझे याद है जैसे कि लोग मुझे स्त्रियों से घृणा करने वाला कहते हैं। इसका कारण ये था क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने स्त्रियों में बहुत ही अनैतिकता देखी, मुझे उनसे घृणा हो गई। और अब मैं वैसा नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनमें से बहुत सी अच्छी स्त्रियाँ भी हैं। परंतु मुझे याद है कि वे कितनी बुरी और अनैतिक थीं। और मैंने सोचा जहाँ लोग होंगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और इसलिए ना ही मैं पढ़ूंगा। और वहाँ एक छोटा लड़का बिना कमीज पहने बैठा हुआ है और मेरे कोट में एक पिन लगी हुई है, इस प्रकार से पिन लगी हुई है और काफी गर्मी थी। और अध्यापिका ने कहा विलियम क्या तुम्हें इस कोट में गर्मी नहीं लग रही है? मैंने कहा नहीं महोदया मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। और उन्होंने मुझे चूल्हे के पास भेजकर उसमें कुछ और लकड़ियां डाल दी और मुझे ऐसा लगा कि मैं गर्मी से जल जाऊंगा। और उस पूरे जाड़े भर मेरे पास कमीज नहीं थी। और मैंने सोचा यदि कभी मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मैं 30-30 की बंदूक खरीद सकूं तो मैं पश्चिम की ओर निकल जाऊंगा और वहीं शिकार खेलकर अपना बचा जीवन व्यतीत करूंगा। मैं लोगों से कुछ मतलब नहीं रखना चाहता था, बस अकेला रहना चाहता था क्योंकि वे मुझे पसंद नहीं करते थे और मैं उनसे अलग रहना चाहता था। और हर बार जब मैं शहर जाता और किसी को सड़क पर जाते देखकर जिसे मैं जानता था तो मैं कहता हेलो जॉन जिम तुम कैसे हो? वो कहते हेलो हेलो। देखिए वे मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, मेरे पापा के कारण कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे, उनकी शराब के कारण ऐसा था। और मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैं इस प्रकार का होता। परंतु अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मेरी दीवारें बढ़िया बंदूकों से जो मैं खरीद सकता हूँ ढकी पड़ी हैं। ओह, और मैं उन पुराने गंदे कपड़ों के लिए सोचता हूँ आज रात मेरे पास 2-3 अच्छे सूट हैं। और अब मित्रों, मुझे जंगल में छिपने की आवश्यकता नहीं कि मैं लोगों से अलग रहूं। क्या बात है, ये क्या मेरे व्यक्तित्व के कारण है? क्या ये मेरी शिक्षा के कारण है? जी नहीं, परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने मुझे ऐसी दशा में देखा और उसने मुझे बचा लिया। मैं याद करता हूँ कि मैं अंधे व्यक्ति की तरह हाथ पकड़ कर चलाया जाता था। मैं देख नहीं सकता था, मेरे सामने हर वस्तु धुंधली थी और मैं अपने बाकी जीवन में अंधा ही होता। परंतु परमेश्वर अनुग्रह में धनी है, उसने मेरी दृष्टि वापस लौटा दी। मैं 55 वर्ष का बूढ़ा हूँ और अब तक मेरी दृष्टि अच्छी है। मैं अब केवल यही बात कह सकता हूँ, परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। एक समय ऐसा था कि कलीसिया में चंगाई का कोई साधन नहीं था, वे एक थे परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने उनके लिए दिव्य चंगाई का दान भेजा। वो पवित्र आत्मा है जो हमारे मध्य में चिन्हों द्वारा वचन को प्रमाणित कर रहा है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। मेरे पास इन टिप्पणियों के लिए 2 या 3 पन्ने हैं, परंतु मैं उनको लेने का यत्न नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ध्यान है कि बीमारों की प्रार्थना का समय लगभग हो गया है। परंतु परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। आज रात यहाँ बहुत से हैं जिनके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। बहुत से लोग पहिए वाली कुर्सी में बैठे हैं, वे शायद वहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, उन्हें उसी में रहना है। उनमें से कुछ विभिन्न प्रकार से लकवाग्रस्त हैं, वो वहाँ से नहीं उठ सकते। उनके लिए कोई तरीका नहीं है कि वे वहाँ से उठ सकें। परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है, उसने छुटकारा दिया है। इसे अस्वीकार न कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। यहाँ एक व्यक्ति है जिसे हृदय रोग है, यहाँ लोग हैं जिन्हें कैंसर है, जिनके लिए डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आप आशा रहित और बिना सहायता के संसार में हैं, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। उसने हमारे यहाँ बीच में अपने पवित्र आत्मा को भेजा है जो कि अपने वचन को सिद्ध करके ये सिद्ध करता है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्योंकि क्या हम इसके योग्य हैं? क्योंकि वो अपने अनुग्रह में धनी है। आमीन। अब वही है, वही एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु है। वो मृत नहीं है, परंतु वो मरे हुए में से जी उठा है और हमेशा के लिए जीवित है। वो कल, आज और सदा तक एक सा है। वो आज भी अनुग्रह में वैसे ही धनी है जैसे वह लहू बहने वाली स्त्री के लिए था। और वो भीड़ में घुस गई, उसके लिए कोई आशा नहीं थी। डॉक्टरों ने जो वो कर सकते थे कर चुके थे। उसको लहू बहता था, वो मर रही थी और उसने गुरु का कपड़ा छू लिया। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, घूमा और उसकी दशा को बता दिया कि वो अपने इस लहू बहने की बीमारी से चंगी हो गई है। एक दिन एक वेश्या कुएं पर गई कि थोड़ा पानी ले आए, उसके लिए कोई आशा नहीं थी। वो समाज से उन लड़कियों के बीच से निकाल दी गई थी जो वहाँ रहा करती थी। उसका जीवन अच्छा नहीं था और उसने सोचा कि अब कोशिश करने से क्या लाभ होगा, मुझे तो निकाल दिया गया है, अब मेरे लिए क्या बचा है। परंतु उसने वहाँ कुएं पर किसी को खड़े या बैठे देखा, वहाँ एक व्यक्ति बैठा था। उसने उसको जो कुछ उसने किया था सब बता दिया। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। वही परमेश्वर आज रात भी वैसे ही अनुग्रह में धनी है जैसे कि वो उन दिनों में था। परमेश्वर धनी है। मैं सोचता हूँ हमने 200 प्रार्थना पत्र बांटे हैं या हमने 200 लोग बुलाए हैं। हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं और लोग कृपया लाइन में आवे, हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले हम आरंभ करें, यहाँ पर कुछ नए लोग भी हैं। हर अंधविश्वास से बचने के लिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्रकटीकरण है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे देख रहे हैं। किसी मनुष्य में ये गुण नहीं है, किसी मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं है, परंतु विश्वासी होने के नाते हमें अधिकार है। शक्ति नहीं, परंतु अधिकार है। अधिक समय नहीं हुआ किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ब्रणम, आप विश्वास करते हैं कि आप में ये करने की सामर्थ्य है? मैंने कहा मेरे पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है, परंतु मेरे पास अधिकार है और हर विश्वासी के पास है। यदि आप अस्वीकार करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, परंतु यदि आप स्वीकार करेंगे तो आपके लिए बहुतायत में होगा क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। एक पुलिस वाली को ही लीजिए जो अपने दुबले पतले से शरीर पर ढीले ढाले से कपड़े पहने सड़क पर खड़ा है, टोपी से उसके कान नीचे की ओर झुके हुए हैं, और वो वहाँ सड़क पर आता है जहाँ मोटर कार 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और उसमें 300 अश्वशक्ति का इंजन लगा है। उसके अंदर तो इतना भी दम नहीं कि साइकिल को रोक सके। ये ठीक बात है, परंतु उसे सीटी बजाने दीजिए और अपने हाथ ऊपर इशारे के लिए करने दीजिए और देखिए ब्रेक कैसी आवाज करते हैं। उसमें कोई ताकत नहीं है, परंतु उसके पास अधिकार है। सारा नगर उसके पीछे है और जब कोई पुरुष या स्त्री, मैं चिंता नहीं करता वो किस दशा में है, उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा आपके पास परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि वो धनी है। उसने बहुतायत में देने की प्रतिज्ञा की है। यदि तुम इस पहाड़ से कहो, परंतु अपने हृदय में विश्वास करो, अविश्वास ना करो कि ये यहाँ से हट जाए, और जो कुछ तुमने कहा है वो हो जाएगा, आप जो कहेंगे हो जाएगा। आप में सामर्थ नहीं है, परंतु आपके पास अधिकार है। याद करें जब उसने मुझसे कहा कि तुम लोगों के हृदय के विचार प्रकट करने योग्य हो जाओगे, क्योंकि वो आप में से फिनिक्स के बहुत से लोगों को याद है ना, उसने ये प्रतिज्ञा की थी। वो जो भी प्रतिज्ञा करता है वो करता है। कोई संदेह नहीं कि यहाँ आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है। आप में से कितने बीमार हैं और उनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, जरा अपने हाथ उठाएं। ठीक है, ठीक है। यदि आप जानना चाहते हैं, अधिकार नहीं, नहीं सामर्थ नहीं, परंतु वचन का अधिकार, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। यीशु ने लूका 17:30 में अपने आने से पहले प्रतिज्ञा की है कि तब नूह का सा समय होगा, मूसा या नूह का, तब वे खाते पीते और विवाह में लेन देन करते होंगे और उस दिन तक ना जान पाए जब नूह जहाज में घुसा। उसने कहा फिर वही समय होगा। तब उसने ये भी कहा जैसा कि लूत के दिनों में था, और उसने कहा यही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र अंतिम दिनों में प्रकट होगा। अब देखिए किस प्रकार से मनुष्य का पुत्र अपने आप को इस स्वर्गदूत के व्यक्ति में प्रकट करता है जो कि मनुष्य का पुत्र था, बिल्कुल पूर्ण रूप से। इब्राहिम ने उसे एलोहिम कहा, वो मनुष्य का पुत्र था। उसने अन्य जाति के संसार को जलाने के लिए पहले अपने आप को प्रकट किया था। विश्वासी के लिए उसने ये कैसे किया? दिखावटी विश्वासी के लिए उसने प्रचार के लिए तो प्रचारक भेजे, परंतु सच्चे विश्वासी के लिए वो तंबू की ओर पीट करके खड़ा हो गया और उसने कहा अब्राहम। वो कुछ ही दिनों पहले अब्राहम था, परंतु अब वो अब्राहम है। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो आपके पीछे तंबू में है। उसने कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा तेरे लिए पूरी करने जा रहा हूँ, मैं तुझसे भेंट करने वाला हूँ। इब्राहिम 100 वर्ष का था और सारा 90 की थी, परंतु परमेश्वर अनुग्रह में धनी है, उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उससे बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो दया से परिपूर्ण है, वो दया में धनी है, वो अपना वचन पूरा करता है। ध्यान दें, जबकि उसकी पीठ तंबू की ओर थी तो सारा हंसी और कहा कि ये बातें कैसे हो सकती हैं? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे अपने पति से ये सुख कैसे मिल सकता है जैसे कि नौजवान विवाहित स्त्री को मिलता है, क्योंकि वो तो 100 वर्ष का बूढ़ा है। हमारे वैवाहिक शारीरिक संबंध तो वर्षों पहले ही समाप्त हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है? और वो इस विषय में हंसी। और वो दूत, वो मनुष्य का पुत्र जिसकी पीठ तंबू की ओर थी, उसने कहा सारा तू ये कहकर क्यों हंसी कि ये बात कैसे हो सकती है? ये क्या था? यीशु ने लूका 17:30 में कहा जैसा कि लूत के दिनों में हुआ था, बिल्कुल वैसी ही स्थिति अन्य जाति के संसार के जलने से पहले होगी। उसने कहा मनुष्य का पुत्र अपने आप को उन दिनों में प्रकट करेगा। उसने वही प्रतिज्ञा की जो मलाकी 4 ने प्रतिज्ञा में कहा है, एक संदेश आएगा जो लोगों को फिर से पेंतिकुस्त के संदेश में फेर लाएगा, उन्हीं आशीषों के साथ जो उन दिनों में थी। ये क्या है? ये दो पंखों वाला उगाव है, दोनों पुराना और नया नियम, जो अपनी प्रतिज्ञा रूपी पंखों को एक साथ मार रहा है, जो कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को जो उसने पवित्र शास्त्र में दी है कि वो इनको करेगा। आमीन। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, वो अपने लोगों को इन संगठनों में नहीं जाने देगा जो कि संसारिक वस्तुओं में धनी है, लोदिसिया कलीसिया काल, परंतु वो बच निकलने का रास्ता बना देगा। लोगों, इस बात का विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। परमेश्वर का अनुग्रह ही एक चीज है जिसकी मैं इच्छा करता हूँ, ना उसकी धार्मिकता, ना उसकी व्यवस्था, केवल उसका अनुग्रह जो मैं मांगता हूँ। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह हो, हम सबकी यही कामना है। वहाँ एक स्त्री जो कुर्सियों के आखिर में बैठी है, मैं उसे देख रहा था। महिला, क्या आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपके पास नहीं है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। अभी थोड़ी देर तक पहले आप काफी परेशान थी, क्या नहीं थी? सच में बहुत ही बुरी तरह परेशान थी और आपकी आंखें बहुत खराब हो गई हैं। ये ठीक बात है ना? ये ठीक बात है। अब ये परिवर्तित होने जा रहा है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यदि आप इसका विश्वास करती हैं, अब आपके पास प्रार्थना पत्र भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको मिला है। यहाँ सामने एक छोटा नन्ना मुन्ना बैठा है, यहाँ बैठा है, उसके शरीर पर कुछ मांस बढ़ गया है जिससे वो पीड़ित है। यह भी कुछ समय ही पहले हुआ है। श्रीमान, क्या ये बात ठीक नहीं है? यह ठीक बात है कि आप नहीं जानते कि ये क्या है, आप इसे घबराए हुए हैं। ये ठीक बात है, ये चोट लगने के कारण से हुआ है। क्या ये सही नहीं था? क्या आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। ओ भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उस पर संदेह न कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। ये ठीक बात है। यहाँ एक व्यक्ति स्लेटी सूट पर चश्मा लगाए बैठा है। श्रीमान, इधर देखिए, आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। आप जो बैठे हैं, आपको हर्निया है, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका हर्निया चंगा कर सकता है और आप ठीक हो जाएंगे? कुर्सियों के अंत की ओर बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। यदि आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपका हर्निया चंगा कर सकता है, यदि आप ग्रहण करें तो परमेश्वर आपके लिए कर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप ग्रहण करेंगे इसे? ठीक है, आप इसे ले सकते हैं यदि केवल आप विश्वास करें, अनुग्रह प्राप्त करें। जी हाँ श्रीमान, यहाँ एक महिला बैठी है, वो अपने शरीर के खराब रक्त प्रभाव से पीड़ित हैं, परंतु यदि वो विश्वास करेगी तो परमेश्वर उन्हें चंगा कर देगा। यदि वो इसका विश्वास करेंगी, मुझे लगता है ये इसमें सूख जाएंगी। ये बिल्कुल सत्य है। मेरी प्रार्थना है, प्रभु अनुग्रह करे। जैसा कि मुझे स्पष्ट देखता हूँ, इन महिला का नाम श्रीमती रीले है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर उस खराब खून के दौरे को चंगा कर सकता है? यदि आप करेंगी तो इसे ग्रहण करेंगी। आमीन। केवल विश्वास कीजिए। परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो अच्छा है ना स्टेला? जी हाँ, ये ठीक है। मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में। यहाँ पर एक दूसरी महिला पीछे बैठी है, वहाँ पीछे की ओर जो मुझे देख रही है, उसे भी खराब रक्त प्रवाह है। वो उस समय इस विषय पर सोच रही थी, मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, क्योंकि उस महिला को भी यही समस्या थी। मेरी ओर देखिए, क्या आप मेरा विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता या सेवक हूँ? आपको हृदय रोग भी है, यदि ये ठीक है तो आप अपना हाथ उठाएं। इस समय ये आपको नहीं है। परमेश्वर जो अपने अनुग्रह में धनी है, इससे पहले दिखा रहा है कि वो जीवित है, या आज रात इस भवन में है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। आमीन। यहाँ पर हो सकता है जितने भी पापी और पिछड़े हुए हैं खड़े होकर और कहें, परमेश्वर तू जो अपने अनुग्रह में धनी है, मुझ पर दया कर। आप खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप विश्वास करें कि वो चाहता है कि आप पर अनुग्रह करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। जो पिछड़ गए हैं अपने पैरों पर खड़े हों, परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। क्या आप ये बात ठीक है कि इस स्थिति में आप अभी तक इतने शून्य नहीं हुए हैं कि आप इस समय की परमेश्वर की प्रतिज्ञा को न देख सकें? ये सच है कि अभी आप अपने संगठनों और दूसरी बस्तियों में इतने नहीं बंध गए हैं कि आप ये न देख सकें कि इस समय की प्रतिज्ञा क्या है। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। आप चाहे जो भी थे, आप खड़े हुए, मैं आपके लिए एक मिनट के बाद प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाना चाहता हूँ कि एक पूर्ण सुसमाचार की कलीसिया और एक मसीह बपतिस्मे से बपतिस्मा लें। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। और कोई ये जो खड़े होकर कहता हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखें, परमेश्वर अपने अनुग्रह में मुझे याद रखें। हो सकता है जैसे मुझे जीवित रहना चाहिए, मैं नहीं जिया। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक बात है। परमेश्वर तू जो अपने अनुग्रह में धनी है, मुझ पर अनुग्रह कर। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। और कोई यह है जो कहे, मैं खड़ा होऊंगा, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर जाने कि मैं अनुग्रह चाहता हूँ। मैं अच्छा जीवन नहीं जिया, कभी मैं ऐसे कभी वैसे जिया, कभी उठ गया कभी नीचे चला गया, परंतु मैं उसको अनुग्रह चाहता हूँ। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई और कह रहा है, परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक है, परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। वहाँ पीछे परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको देखता है। जरा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या इससे कुछ लाभ होगा? बिल्कुल, खड़े होकर और देखिए कि कितना फर्क होता है। यदि आप अपने हृदय में वास्तव में सच्चे हैं, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु हर एक प्रायश्चित करे। परमेश्वर अनुग्रह में धनी है। ओ परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर। आप में सब कितने ऐसे हैं जिनके पास वो प्रार्थना पत्र है? वो क्या थे? ए और बी के? ये थे ना, ए के और बी। वे सब लोग जिनके पास एक एक कार्ड है वे इसे और खड़े हो जाएं और प्रार्थना पत्र बी वाले उनके पीछे खड़े हो जाएं। मुझे लगता है यदि कुछ सेवक जिनको मेरी सहायता करनी है यदि वे हैं और यहाँ आना चाहें तो मुझे आपकी सहायता से प्रसन्नता होगी क्योंकि आप लोगों के साथ प्रार्थना करने में हमें खुशी होगी। बाइबल ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। जी हाँ श्रीमान, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे। क्या ये हमने किया है? हमारी नहीं, परंतु परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से उसने अपने वचन को पूरा किया है परमेश्वर ने। अब इन पहिए वाली कुर्सी को यदि आप इन्हें यहाँ सामने लाना चाहें तो हम इनके लिए यही प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं कि इन्हें गलियारे में खींचते फिरें। ठीक है, इन सबको यहीं आने दें। हम अवश्य ही इनमें से हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने अनुग्रह में धनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए सीधे हाथ की ओर खड़े हो जाएंगे? क्या भाई ब्राउन आपके साथ आए हैं? कल आ रहे हैं? मुझे आशा थी कि वे आज यहीं होंगे। भाई आउटलो कहाँ हैं? भाई फुलर कहाँ हैं? यही कुछ लोग थे जब मैं पहली बार आया था तो मेरे साथ थे। चलिए पीछे चलें। आपको याद है वो पुराने तरह की प्रार्थनाओं की पंक्तियाँ जब हम तब तक खड़े रहा करते थे जब तक आप लोगों को मुझे दोनों ओर से पकड़ना पड़ जाता था। मैं बहुत ही कमजोर हो जाता था। आप में से कितने लोग उन सभाओं में शुरू में थे? इधर देखिए, आपको याद है ना पहले जब मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु ने कहा है यदि मैं सच्चा रहूंगा तब ये सब होगा। ठीक है ना? हम उन दोनों में ऐसे नहीं हुआ करते थे, परंतु ये हुआ क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह में धनी है और अपनी प्रतिज्ञा में सच्चा है। आमीन, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। ओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। आमीन। ओ, मैं यहाँ लगभग सभी जगह ऐसे लोग हैं जिनके हृदयों में अग्नि भड़की है, वही आग जो पेंतेकुस्त के दिन आई थी जिसने उन्हें शुद्ध किया था और वे शुद्ध हुए। ओ, वो मेरे हृदय में जल रही है। ओ, उसके नाम को महिमा पहुँचे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। ओ, मैं एक अभागा, दरिद्र, निर्धन, अभागा, अंधा जैसा कि मैं था और अब उसके अनुग्रह से, उसकी बहुतायत की दया से मैं आँखों से इसके राज्य को देख सकता हूँ। आमीन। उसकी आज्ञाएं कितनी सुंदर हैं। मेरे भाई अपनी बैसाखी पर सीधे खड़े तो हो जाएं। यदि आप नहीं उठ पा रहे हैं तो ठीक है, वहीं खड़े रहिए, हम वहीं आपके पास प्रार्थना करने आ रहे हैं। और अब ए और बी के प्रार्थना पत्र वाले यहाँ दूसरी ओर पंक्ति बना लें और हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सेवक भाइयों, आप भी बिल्कुल, यदि आप बीमारों पर हाथ रखने में विश्वास करते हैं तो आप यहां आकर मंच पर मेरे साथ खड़े होइए। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब वो लोग जो पंक्ति में खड़े हैं, यदि आप यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर वही कर रहा है जिसको करने का उसने वायदा किया है वो करेगा। यदि मुझ में आपको चंगा करने की सामर्थ होती तो मैं अवश्य चंगा करता। यदि मेरे पास आपको चंगा करने का कोई तरीका होता तो मैं अवश्य करता। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मुझे परमेश्वर ने एक छोटा सा वरदान दिया है। मेरे पास तो इतनी शिक्षा भी नहीं है कि एक प्रचारक की योग्यता पाऊं, जो कि आजकल प्रचारक कहलाते हैं, जबकि धार्मिक ज्ञान का अनुभव होना चाहिए और कोई विशेष डॉक्टरी डिग्री होनी चाहिए और कुछ इसी तरह का। मैं उसके योग्य नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर जो मेरे हृदय को जानता है कि मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं उसकी सराहना करना चाहता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि श्री ब्रैनम, मैं सोचता हूँ कि आप एक अच्छे आदमी हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप हृदय से सच्चे पर गलती पर हैं। आप परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल बाहर हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अंत में दोषी ठहराए जाएंगे? और मैंने कहा, देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाद विवाद में आपको पूरा अधिकार है, आप जो कहना चाहें कहें। यदि मैं गलती पर हूँ, जो कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं नहीं हूँ, परंतु यदि मैं गलती पर था और आज मुझे इस बात का मालूम हो जाए कि मैं 100 वर्षों के लिए जीने जा रहा था और वो मुझे जीवन के अंत में दोषी ठहराने जा रहा था और मुझसे कहे, विलियम ब्रैनम, तुम मेरे स्वर्ग में आने के योग्य नहीं हो और तुम बाहर अंधकार में चले जाओ, तो आप जानते हैं क्या, मैं जैसा भी हूँ जीवन के अंतिम दिन तक उसकी सेवा हर दिन करूँगा, क्योंकि मैंने उससे इतनी बहुमूल्य आशीषें पाई हैं कि वो मेरे लिए जीवन से भी अधिक हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ और आगे भी जो कुछ मैं हो पाऊंगा, ये सब कुछ उसकी दया और अनुग्रह से आया है। मैं तो अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा था, परंतु अनुग्रह से उसने मुझे चंगा कर दिया है और अब मैं दृढ़ और स्वस्थ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूँ। मेरी दृष्टि अच्छी है, मेरे पास खाने पीने और जो भी मुझे आवश्यकता होती है सब है। उसने कभी ये प्रतिज्ञा नहीं की कि वो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, परंतु मेरी आवश्यकताएं पूरी करेगा। यदि मैं उस दिन निकाल दिया जाऊं और मुझे ये मालूम हो जाए, मैं नहीं देख सकता हूं कि मैं कहां होऊंगा, परंतु यदि मैं जान जाऊं कि मैं गलत था और परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि मैं गलत हूं, तो मैं गलत ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं तो उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। ये तो मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं कि जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए। अब ये तो बहुत ही बड़ी बात है, परंतु मैं आशा करता हूं कि जो आत्मा मेरी इस बात में है वो आप समझ सके। देखिए, मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बहुत सी बार मैं उससे कुछ चीजें मांगता हूं, वो अपना सिर हिलाकर नहीं कर देता है, तो मैं तब भी उतना ही खुश होता हूं जैसे कि यदि वो हाँ कह देता है, क्योंकि हमें उससे हमेशा यही कहना चाहिए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसकी सारी नहीं ही उसकी इच्छा है, तो मेरे लिए ये उसकी हाँ से अच्छी है। यदि इसी में उसकी इच्छा पूरी होती है, ये तभी है जब आप उसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। आमीन। मैं तो उसके विषय में बातें करने लगा, मैं अब रुक नहीं सकता। वो तो मेरे लिए वास्तविक है, मेरे लिए बिल्कुल सत्य है। मित्रों, वही मेरे लिए सब कुछ है। आगे भी जो कुछ हो सकता है वही है, वही मेरी सारी आशा है, जो यीशु मसीह है, उसका वचन। आज रात मैं पवित्र आत्मा की गवाही के लिए धन्यवादित हूँ इस संदेश के लिए। हो सकता है कि कोई असहमत हो, परंतु मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस संदेश के लिए मैं अपने कर्तव्य में बंधा हूँ। एक चिन्ह इसके आगे आगे प्रकट हुआ है। अब परमेश्वर चिन्ह इसलिए नहीं भेजता कि वो ये दिखाए कि देखो मैं परमेश्वर हूँ। एक संदेश है, वचन हमेशा चिन्ह के पीछे आता है, ये सब जानते हैं। यीशु चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ आया। जब वो चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखा रहा था तो वो एक महान व्यक्ति था, परंतु जब उसने बैठकर संदेश देना आरंभ किया, मैं और मेरा पिता एक हैं, तब तो ये उनके लिए सब गलत हो गया। देखा, परंतु वचन चिन्ह के पीछे आता है। मूसा को दो चिन्ह दिए गए थे, प्रत्येक चिन्ह की एक आवाज थी। ये ठीक बात है, मैंने अभी कुछ समय पहले ये कहीं प्रचार किया था, चिन्ह की आवाज या वचन। चिन्ह की एक आवाज होनी ही है, ये बदल रही है, सदा से ऐसा ही हुआ है। यदि ये ऐसा नहीं हुआ तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं आया। यदि कोई मनुष्य एक भिन्न और अजीब सी सेवा के साथ आया है और वो बाइबल के अनुसार सत्य है, और वो व्यक्ति उसी पुराने संगठनों में मतों से बंधा हुआ है, तो उसे भूल जाइए, उसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर इस तरह कोई कार्य नहीं करता। ये केवल सड़ा हुआ मन्ना है जिसको दीमक लग गई है, या इसमें कीड़े पड़ गए हैं, या जो भी आप कहना चाहें। 40-50 वर्ष पहले पुराना मन्ना अब भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले गिरा था। जब इसराइल बालक अपनी यात्रा पर थे तो हर रात नया मन्ना गिरता था। यह ठीक बात है, आप उसे रख नहीं सकते थे। हम किसी बीते हुए युग में नहीं रहते हैं, हम नया ताज़ा मन्ना स्वर्ग से अपनी यात्रा में खा रहे हैं जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं। आइए अब हम अपने सरों को झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति बहुत ही वास्तविक है। प्रभु, मैं आपके अनुग्रह के लिए सोचता हूँ। अभी हमने आपको बहुत से काम करते देखा है, हमने आपको भाषाओं में बोलते सुना है, आप उसका अर्थ अपने लोगों में से होकर बताते हैं। ओ परमेश्वर, बीमारों को चंगा होते देखते हुए और अंधों की आंखें खुलते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बात करते हैं। आप कितने महान और सामर्थी परमेश्वर हैं। ये देखते हुए कि आपने अंत के दिनों में इन बातों की प्रतिज्ञा की है, यद्यपि हमारे यहाँ बहुत से संसारिक नकल करने वाले हैं, जबकि वो केवल ये स्पष्ट करते हैं कि कहीं कोई वास्तविक परमेश्वर है, कहीं कोई सत्य है। और स्वर्गीय पिता, आज रात मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम परमेश्वर के प्रति इतने चेतन हो जाएं कि हम देखते हैं कि आप यहाँ हैं, और ये लोग जो पंक्ति में हैं, जब इस पंक्ति में आते हैं, प्रभु हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इनसे प्रतिज्ञा की है, और आपने कहा है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। यहाँ पर सेवक भाई लोग खड़े हैं, इस व्यक्ति को आपने संसार की सृष्टि करने से पहले चुना है ताकि जो आज वे हैं वही हों। इससे पहले कि संसार था आप जानते थे कि आज रात ये यहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि आप अनंत हैं। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आज रात हम प्रार्थना करते हैं कि ये बीमार लोग जो कि अपंग, अंधे, लंगड़े, कैंसर से ग्रस्त हैं, चाहे जो भी हो, जब इस पंक्ति से निकले, काश वे इस बात को अनुभव कर सके कि वही परमेश्वर जो हृदय के विचारों को जानता है उन्हें चंगा करेगा यदि वे केवल इसे ग्रहण करें। केवल देखिए और समझिए, वो व्यक्ति जो पीतल के सांप की ओर इस प्रकार देखता था कि मानो जैसे ये पीतल का टुकड़ा याजक का है, तो वो कभी भी चंगा ना होता, क्योंकि उसके पास ये समझ नहीं थी कि वो क्या है। और प्रभु आज भी ऐसा ही है। यदि वे वरदान की ओर देखते हैं और ये सोचते हैं कि इससे उनकी सहायता हो सकती है, तो उनके पास इसकी समझ नहीं है। ये तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण है जो कि चंगा करने के लिए है। पिता इसे ग्रहण करें, होने दें कि ये यीशु मसीह के नाम में हो, आमीन। मैं चाहता हूँ कि कोई जरा पियानो पर आए, यदि वो कोई पुरुष या स्त्री या जो कोई भी हो, वो आकर इस गाने को बजाए। वो महान वैद्य जो यहाँ पास में है, सहानुभूति प्रकट करता हुआ यीशु, यदि बहन बजाएंगी जहाँ कहीं भी पियानो बजाने वाली हैं, हाँ वो हैं। मुझे याद है मेरी आरंभ की एक चंगाई सभा जो फोर्ट वेन इंडियाना में हुई, एक सभ्य एमिश महिला पियानो पर, वो महान वैद्य अब मेरे पास में है, सहानुभूति भरा यीशु बैठी हुई बजा रही थी। एक अपंग छोटा बच्चा मेरे पास मंच पर लाया गया था, और जब मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वो मेरी बाहों में से कूद कर मंच से नीचे उतर कर भागा। उसकी माँ बेहोश हो गई, दादी माँ ने अपना रुमाल फेंक कर चिल्लाना आरंभ कर दिया, और ये सभ्य छोटी एमिश लड़की जो कि पेंटेकोस्ट के विषय में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो एमिश गिरजे से थी, परंतु वो पियानो बजा रही थी। उसके लंबे बाल थे और वो आत्मा में खड़ी होकर अन्य भाषा में गाने लगी, और उस गीत के साथ उस पियानो के नोट ऊपर नीचे होकर बज रहे थे। वो महान वैद्य अब पास में है, वो सहानुभूति से भरा यीशु, आमीन। वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। अब आइए हम प्रार्थना करें, जैसे कि आइए हम सब वो जो बाहर हैं प्रार्थना करें। आप लोग जो पंक्ति में आ रहे हैं, जब हम आपके ऊपर हाथ रखें तो याद रखें, यीशु ने कहा यदि तुम ये विश्वास करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। आप विश्वास करते हैं? हम सब गाएं।
Let's just close our eyes now as we sing. Hearts to choose. Oh, hear the voice of Jesus. Sweet as note in Sarah's song. Sweet. Father God, move upon the people now. Oh, Jesus, let say Jesus, the great.
Oh, Mahan. अब जब आप यहाँ चलते हैं तो वो यहाँ हैं। मेरे शब्द सुनिए, या फिर आप स्वयं विश्वास करें, वो यहाँ हैं। प्रत्येक जो प्रार्थना में है और बाहर जो लोग हैं,
sing it right with me. He speaks the moving heart to cheer. Oh Lord, I believe. Oh Lord, I believe. All things are possible. Oh Lord.
वो सब जो विश्वास करते हैं अपना हाथ इस तरह उठाएं और कहें, मैं विश्वास करता हूं। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ से बढ़कर बात करने का कारण ये था कि वो कैंसर से मर रहा था, वो अपनी बैसाखी पर है। परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं कि वो जीवित रह सके। उसके सारे पेट में कैंसर है, वो मरने पर है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह न हो तो, और मेरी इच्छा है यदि मैं कुछ शब्द हिम्मत के लिए इस मनुष्य से कहूं, आप जानते हैं कि डॉक्टर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उस स्थिति से आगे निकल चुके हैं, देखा, और आप आपके पास केवल एक अवसर है और वो मसीह में है, देखा। और भाई आप, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, आपको भी जाना होगा। यदि यीशु आने में देर करता है तो मुझे आपसे वहाँ मिलना होगा, न्याय के कटघरे में खड़े होकर। और आज रात आप जानते हैं, जैसा कि टेलीविजन हर समय यहाँ तक कि हम उंगली भी हिलाएं सबको अंकित कर लेता है, हर शब्द जो हम कहते हैं वो सब लिखा हुआ है। अब देखिए, टेलीविजन ने ये सिद्ध कर दिया है। टेलीविजन तस्वीरें नहीं बनाता, ये तो एक साधन है जो टेलीविजन में से होकर है। देखिए, वो उसे बनाता नहीं, जब आदम पृथ्वी पर था वहाँ टेलीविजन था। जब मूसा लाल सागर से होता हुआ निकला तो वहाँ टेलीविजन था। जब एलिया कार्मेल पर्वत पर था तो वहाँ टेलीविजन था। परंतु ये तो इन्होंने अब खोजा है, समझे? और अब चारों तरफ में हर काम, हर बात जो हम करते हैं उसको वो अंकित करता है और न्याय पर हमारी भेंट उससे होगी। हर काम जो हम करते हैं वो हमारे सामने होगा और जो कुछ शब्द मैं कहता हूँ उसका उत्तर मुझे देना होगा। मैं आपसे एक सेवक के नाते कहता हूँ, मुझे तो ये करना ही है क्योंकि परमेश्वर इस जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर मुझसे पूछेगा। अब यदि मैं कर सकता तो आपको चंगा कर देता, क्योंकि आपके पास थोड़ा समय है, यदि भी परमेश्वर के लिए नहीं। अब मैं नीचे आकर आपके लिए जितना मैं जानता हूँ उससे प्रार्थना करूँगा। भाई, संसार में जो कुछ भी मैं इस व्यक्ति के लिए कर सकता हूँ वो मैं करूँगा जो कि यहाँ इस स्थिति में बैठा हुआ है। और देखिए, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप पहले ही अच्छे हो चुके हैं क्योंकि यीशु ने कहा तुम हो गए थे। देखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अब यदि आप अपने हृदय की गहराई से ये ग्रहण करते हैं कि आप नहीं मरेंगे परंतु आप जिएंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि वो टेलीविजन इस कमरे में आ रहा है। हम जानते हैं कि हम उसे नहीं देखते, हम उसे नहीं देख सकते। हमारी आंखें उस तरह नहीं बनी हैं, हमारी इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती। उसके लिए बनी हुई ट्यूब चाहिए या जो भी है, या वो क्रिस्टल है जो कि उसे पकड़ सकता है। ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति है, हम उसे नहीं देख सकते हैं परंतु हम जानते हैं कि वो यहाँ है। यीशु मसीह ऐसा ही है। देखिए, वो अपने आप को केवल घोषित करता है। वो अपने आप से कैसे करता है? अब जहाँ तक चंगाई है, यदि वो यहाँ पर अभी खड़ा है तो वो आपके लिए इससे अधिक नहीं कर सकता। देखिए, कोई और चीज नहीं। यदि मनुष्य का पुत्र यहाँ खड़ा है था जो कि वो है, वो यहाँ है, परंतु वो भी आपके लिए इससे अधिक नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले ही अपने आप को यहाँ प्रमाणित कर चुका है, समझे? और वो इस समय यहाँ पर है बिल्कुल वैसे ही आपको चंगा और स्वस्थ करने के लिए। और उस महिला ने मुझे बताया, कहा आपने आशीष मांगी और भविष्यवाणी की या जो कुछ भी उसके लिए किया कि उसे एक बच्चा मिले, जबकि वो पहिए वाली कुर्सी में बैठी थी और उसे मिला, उसे बालक उत्पन्न हुआ। और अब यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है, उसकी गले की बीमारी का ऑपरेशन हुआ था और उसे लकवा मार गया। हमने अभी बहुत सी बातें होती हुई देखी है। अब छोटी बहन, मैं जानता हूँ कि आप एक सच्ची मसीही हैं। क्यों परमेश्वर ने आपको यहाँ बिठा रखा है मैं नहीं जानता। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि ये हो सकता है आप में विश्वास है। आप विश्वास प्राप्त करने का यत्न कर रही हैं कि आप वहाँ से उठकर निकल आएं। देखा, परंतु अब देखिए, हम इसके लिए कोशिश ना करें, हम इसे ले लें। देखिए, होने जा रहा है, अब बस अब ये आरंभ होने जा रहा है और हम चंगे होने वाले हैं। और आप लोग जो वहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं, जहाँ कहीं भी या आप जो भी हैं, केवल ये याद रखिए कि मसीह यहाँ उपस्थित है। अब आप कहिए कि यहाँ कोई है, क्या आपने मेरा चित्र यहाँ आते हुए देखा? ओ हाँ, यहाँ तक कि यीशु मसीह के वचन जो कि उसने यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए बोले, इस स्थान में घूम रहे हैं, वे कभी नहीं मरते। आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये वैज्ञानिक रीति से सत्य है? वो क्या है? तब आत्मा ने वो शब्द जो लिखे हुए हैं लेकर प्रकट कर दिया है। ओ महिमा हो, वो यहाँ है, वो प्रभु इस समय यहाँ है। हम केवल, हमने बहुत कुछ देखा, उसने बहुत कुछ किया, जब तक कि हम ऐसे ना हो जाएं। अब जानते हैं कि एक तरह से ठोकर का कारण, यदि हम ये अनुभव करें कि ये कोई पौराणिक कथा नहीं, कोई धर्म ज्ञान की संज्ञा नहीं, परंतु उसकी प्रतिज्ञा का प्रमाण ये है कि वो इन दिनों में अपने को प्रकट करेगा, वो इसकी घोषणा हमारे सामने करेगा इसी समय। कितनी बढ़िया बात है, क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? आप विश्वास करते हैं क्या? आप इसका विश्वास करेंगे? विश्वास कीजिए कि आप नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे, आप उसके नाम की महिमा करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। क्या आपका कभी बपतिस्मा हुआ है? क्या आप मसीही हैं? आप हैं और आप मसीही हैं। आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहना चाहते हैं तो मेरे भाई जाइए, जीवित रहिए, यीशु मसीह के नाम में जीवित रहिए। और बहन, आप परमेश्वर की महिमा के लिए चलना चाहती हैं और अपने बच्चे की देखभाल करना चाहती हैं, तो फिर यीशु मसीह के नाम में चलिए। आप हर एक यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही करें। आज रात इस वेस्टफोर्ड होटल को ना भूलें। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ प्रमाणित हुई है। वो किसी व्यक्ति का तरफदार नहीं, वो केवल ये चाहता है कि आप विश्वास करें। क्या आप उसका विश्वास करते हैं? आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। मैं नहीं जानता कि इन्होंने विसर्जन के लिए किसको चुना है। भाई मुशिकेन यहाँ है, यहाँ आइए भाई, ये आपको प्रार्थना के साथ विदा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।